मैं सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। मैं उसके एकमात्र पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा से कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ।
उसने पोंतियुस पिलातुस के हाथों दुख सहा, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया।
वो अधोलोक में उतरा,
तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा,
वो स्वर्ग में चढ़ गया
और वह सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है,
जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं पवित्र आत्मा में, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया में, पवित्र संतों की संगति में, पापों की क्षमा में, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन।
आधुनिक संसार में अधिकांश लोग जब कलीसिया शब्द को सुनते हैं तो वे एक भवन के बारे में सोचते हैं जहां मसीही लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकत्रित होते हैं। कई बार ये भवन विशाल और अलंकृत कला से सुशोभित खूबसूरत गिरजाघर होते हैं। कई बार ये साधारण साज सज्जा वाले छोटे आराधनालय होते हैं। कई बार इन्हें गोदामों या दुकानों को बदलकर बनाया जाता है। कई बार ये घर छोटी कुटियां या मिट्टी की झोपड़ियां या गुफाएं होती हैं, जहां आराधक खतरे से छिपते हैं। परंतु प्रेरितों के विश्वास कथन में बाइबल के समान ही कलीसिया शब्द मुख्यतः परमेश्वर के लोगों को बताता है। पवित्र समुदाय जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करने वालों के द्वारा रचित है।
ये प्रेरितों के विश्वास कथन की हमारी श्रृंखला का पांचवा अध्याय है और हमने इसे कलीसिया शीर्षक दिया है। इस अध्याय में हम प्रेरितों के विश्वास कथन के उन कथनों को देखेंगे जो इस पवित्र संस्थान में अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं। प्रेरितों का विश्वास कथन कलीसिया के बारे में स्पष्ट रूप से इन शब्दों में बात करता है, मैं पवित्र सर्वभौमिक कलीसिया संतों की संगति में विश्वास करता हूँ। विश्वास कथन में ये कथन पवित्र आत्मा और उसकी सेवकाई के लिए समर्पित भाग में आते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा त्रिएकत्व का वो व्यक्ति है जो सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप में दैनिक आधार पर कलीसिया के साथ सम्मिलित है। अतः हम पवित्र आत्मा पर अपने अध्याय में कलीसिया की चर्चा कर सकते थे, परंतु हमने कलीसिया पर पूरे अध्याय को लगाना चुना, क्योंकि ये मसीहियत और मसीह के अनुयायियों के रूप में जीवन के हमारे अनुभव के लिए आधारभूत है। जैसा हमने एक पिछले अध्याय में बताया, बहुत से प्रोटेस्टेंट कलीसिया में विश्वास के अंगीकार को अजीब मानते हैं, जैसे कि कलीसिया में हमारा विश्वास परमेश्वर पर हमारे विश्वास के तुल्य हो। जब विश्वास कथन कहता है कि हम कलीसिया में विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उद्धार के लिए कलीसिया पर विश्वास करते हैं। उद्धार दिलाने वाला विश्वास मसीह में और केवल मसीह में है, परंतु हम कलीसिया में इस अर्थ में विश्वास करते हैं कि हम बाइबल पर विश्वास करते हैं जब वो हमें कलीसिया के बारे में सिखाती है और हमें बताती है कि कलीसिया मसीहियों के लिए महत्वपूर्ण है। और यही बात संतों की संगति में विश्वास करने के बारे में सत्य है। हम अपने उद्धार के लिए दूसरे विश्वासियों पर भरोसा नहीं करते हैं, परंतु हम बाइबल की शिक्षा पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें सुसमाचार सुनाने, सेवकाई करने और हमारे विश्वास को मजबूत बनाने के लिए दूसरे विश्वासियों का प्रयोग करता है। कलीसिया पर हमारा अध्याय चार केंद्रीय शिक्षाओं में विभाजित होगा जो विश्वास कथन में प्रतिबिंबित है। पहले हम कलीसिया की दिव्य स्वीकृति को देखेंगे। दूसरा, हम इस तथ्य पर विचार करेंगे कि कलीसिया पवित्र है। तीसरा, हम इसके सार्वभौमिक या वैश्विक होने की बात करेंगे। और चौथा, हम इस विचार को देखेंगे कि कलीसिया एक संगति है। इनमें से प्रत्येक भाग कलीसिया की पहचान और प्रकृति को समझने में हमारी सहायता करेगा, जिसकी प्रेरितों के विश्वास कथन में पुष्टि की गई है। आइए हम पहले कलीसिया की दिव्य स्वीकृति को देखें।
आधुनिक संसार में बहुत से ऐसे मसीही हैं जो मानते हैं कि कलीसिया अनावश्यक है, या वे कम से कम ऐसे दिखाते हैं। बहुत से मामलों में सच्चे विश्वासी सोचते हैं कि कलीसिया जैसे संस्थान मानवीय खोज हैं, जो परमेश्वर के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध में हस्तक्षेप करती हैं। परंतु पवित्र वचन बहुत अलग दृष्टिकोण सिखाता है। बेहतर अर्थ में कलीसिया पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य, उसके विशिष्ट लोगों की मंडली और वह केंद्रीय माध्यम है जिसके द्वारा वह उन लोगों पर अनुग्रह करता है जो उसके प्रति विश्वास योग्य हैं। पवित्र वचनों के अनुसार परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को स्थापित करने और बनाए रखने में कलीसिया अहम है।
जब हम कहते हैं कि कलीसिया परमेश्वर द्वारा स्वीकृत है, तो हमारा मतलब है कि उसने इसे एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया और इसे अधिकार प्रदान किया है। सामान्य शब्दों में पवित्र वचन सिखाता है कि परमेश्वर कलीसिया का अनुमोदन करता है। ये वो संस्थान है जिसे उसने संसार में अपने मिशन को पूरा करने के लिए निर्धारित किया है। जैसे स्वयं यीशु ने मत्ती 16:18 में कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। कलीसिया पापी मनुष्यों की खोज नहीं है। यीशु स्वयं कलीसिया का संस्थापक है। इसलिए यद्यपि हम इतिहास में कलीसिया में कई कमियां देखते हैं और कई बार कलीसियाएं सुसमाचार से इतनी दूर चली जाती हैं कि वे परमेश्वर की कलीसिया नहीं रहती हैं, लेकिन हमें ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि बेकार या अनावश्यक है। प्रेरितों का विश्वास कथन इन आसान शब्दों में कलीसिया की दिव्य स्वीकृति की पुष्टि करता है। मैं कलीसिया में विश्वास करता हूं। आपको पिछले अध्यायों से याद होगा कि प्रेरितों का विश्वास कथन आरंभिक कलीसियाओं के विश्वास के नियमों का सारांश है और वे विश्वास के नियम पवित्र वचन के सारांश थे। अतः जब विश्वास कथन कलीसिया में विश्वास का अंगीकार करता है, तो ये कलीसिया के बारे में बाइबल की शिक्षा की पुष्टि करता है। और कलीसिया के बारे में बाइबल की शिक्षा का सर्वाधिक मूलभूत पहलू है कि परमेश्वर ने संसार में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कलीसिया को नियुक्त किया। कलीसिया की दिव्य स्वीकृति को देखते समय हम तीन मुख्य विचारों पर ध्यान देंगे। पहला, हम कलीसिया के पुराने नियम की पृष्ठभूमि को देखेंगे। दूसरा, हम इस बात पर ध्यान देंगे कि अपनी पृथ्वी की सेवकाई के दौरान कलीसिया को स्थापित करने के लिए यीशु ने क्या किया। और तीसरा, हम बाइबल के इन दृष्टिकोणों के कुछ आशयों को देखेंगे। आइए पहले हम कलीसिया के पुराने नियम की पृष्ठभूमि को देखें। नए नियम में कलीसिया की विचारधारा की जड़ें वास्तव में पुराने नियम में हैं।
बहुत से लोग सोचते हैं कि कलीसिया पिंतेकोस्त के दिन शुरू हुई जब यीशु स्वर्ग में चला गया और उसने चेलों पर अपने आत्मा को उंडेला। परंतु मेरा विचार है कि यह कलीसिया की प्रकृति की गलत समझ है। मेरा विचार है कि कलीसिया पुराने नियम के परमेश्वर के जनों की निरंतरता है। परमेश्वर ने अब्राहम और पुराने नियम के लोगों को बुलाया और हम आसानी से कह सकते हैं कि यह कलीसिया है, कलीसिया के शुरुआत है। अतः कलीसिया वहां शुरू हुई, हमारे समय में जारी है और यह यीशु मसीह के स्वर्ग से दोबारा आगमन के दिन तक रहेगी।
नए नियम कलीसिया के लिए बहुत बार यूनानी शब्द एक्लेसिया का प्रयोग करता है, परंतु यह शब्द सेप्टुजिंट पुराने नियम के यूनानी अनुवाद से लिया गया था। पुराने नियम में एक्लेसिया और उसके इब्रानी समानार्थी को इसराइलियों की मंडली की पहचान के लिए बारंबार प्रयोग किया गया है। हम इसे व्यवस्था विवरण 9:10, 31:30, न्यायियों 20:2, पहला राजा 8:14, भजन 22:22-25 तथा और भी बहुत से स्थानों पर देखते हैं। नए नियम में भी जहां एक्लेसिया कलीसिया को बताने वाला तकनीकी शब्द बन चुका है, इस शब्द का पुराने नियम इसराइल की मंडली के लिए प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम 7:38 में हम स्तिफनुस द्वारा अपने हथियारों को किए प्रचार में इन शब्दों को पढ़ते हैं। ये वही मूसा है जिसने जंगल में कलिसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सिनाई पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। यहाँ कलिसिया शब्द यूनानी एक्लेसिया का अनुवाद है जिसका कलिसिया के रूप में अनुवाद किया जाता है। ये संकेत देता है कि इसराइल की मंडली नए नियम की कलिसिया का पुराने नियम का रूप और पूर्ववर्ती थी। और पहला पत्रस 2:9 में पत्रस भी कलिसिया को पुराने नियम इसराइल के नामों से संबोधित करता है। देखें उसने क्या लिखा, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। यहाँ पत्रस ने कई पुराने नियम पद्यांशों को उद्धृत किया जो इसराइल के बारे में बताते थे और उसने इसराइल के विशेष नामों को नए नियम की कलिसिया पर लागू किया। इस तरह उसने संकेत दिया कि इन दोनों समूहों के बीच महत्वपूर्ण निरंतरता है।
यदि हम पहला पत्रस अध्याय 2 जैसे पद के बारे में सोचे जहां उन शीर्षकों की पूरी श्रृंखला को कलीसिया पर लागू करता है जो मूलतः पुराने नियम में इसराइल को दिए गए थे, तुम राजपदधारी याजकों का समाज पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, हम देखते हैं कि पत्रस विभिन्न क्षेत्रों की कलीसियाओं के समूहों को जो मुख्यतः अन्य जाति हैं सिखा रहा है कि वे अपने आप को परमेश्वर द्वारा इसराइल को दिए गए वायदे की पूर्ति के रूप में देखें और पहचानें कि ये उनकी पहचान है।
निसंदेह इसका मतलब ये नहीं है कि नए नियम की कलीसिया बिल्कुल पुराने नियम की मंडलियों के समान ही है, वे जुड़ी हुई हैं परंतु वे अलग भी हैं। रोमियो अध्याय 11 में पौलुस पुराने नियम इसराइल की मंडली और मसीही कलिसिया के बीच संबंध के बारे में बताने के लिए दो रूपकों का प्रयोग करता है। वो उन्हें आटे और जलपाई के वृक्ष के रूप में बताता है। देखें रोमियो अध्याय 11 पद 16 में वो क्या लिखता है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तब पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। पहले पौलुस ने कहा कि पुराने नियम की मंडली उसी गूंधे हुए आटे का पहला पेड़ा है जिसमें से नए नियम की कलिसिया बनी है। लैबिया व्यवस्था 23:17 में इसराइलियों से कहा गया था कि वे अपनी रोटी की पहली उपज यहोवा को चढ़ाएं। पहली उपज कोई अलग फसल नहीं थी, वे पूरी फसल का भाग थीं और पूरी फसल का प्रतिनिधित्व करती थीं। इसलिए जब पौलुस ने कहा कि इसराइल और नए नियम की कलिसिया उसी गूंधे हुए आटे का हिस्सा हैं, तो उसने संकेत दिया कि इसराइल और नए नियम के मसीही दोनों एक ही संस्थान परमेश्वर के जनों और एक ही कलिसिया का हिस्सा हैं। दूसरा, पौलुस ने कहा कि पुराने नियम की मंडली पेड़ की जड़ थी और नए नियम की कलिसिया उसी पेड़ की डालियां हैं। पौलुस ने इस उदाहरण को कई पदों में विस्तार से बताया। उसने सदियों से चली आ रही कलिसिया की तुलना जलपाई के वृक्ष से की। मुख्यतः यहूदियों से बनी पुराने नियम की कलिसिया पेड़ का मुख्य भाग थी, जड़ें, तना और बहुत सी शाखाएं, और अन्य जाति मसीही जंगली जलपाई की शाखाएं थे जिन्हें पेड़ में लगाया गया। सरल शब्दों में अन्य जाति मसीहियों को यहूदी कलिसिया में जोड़ा गया। इसलिए यद्यपि पौलुस के समय की कलिसिया में यहूदी और अन्य जाति दोनों थे, लेकिन उसका तना और जड़ें उसी वृक्ष के थे जो पुराने नियम के समय से था। हाँ, ये नया वृक्ष कई प्रकार से अलग है, इसे सुधारा और बनाया गया है, लेकिन अब भी ये वही वृक्ष है। इसी तरह पुराने नियम की कलीसिया को सुधार कर नए नियम की कलीसिया बनाई गई है। वे महत्वपूर्ण रीतियों में अलग हैं और वृद्धि के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु अब भी वे एक ही कलीसिया हैं। अब जबकि हम पुराने नियम की पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से कलीसिया की स्वीकृति को देख चुके हैं, तो आइए देखें कि यीशु ने कलीसिया को कैसे बनाया जब पुराने नियम की कलीसिया पर आधारित थी और उसे आगे भी बढ़ाया।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब यीशु आया उसकी सेवकाई ने संसार और परमेश्वर के लोगों पर अत्यधिक नाटकीय प्रभाव डाला। अच्छे तर्क के साथ बहुत से धर्म विज्ञानियों ने ध्यान दिया है कि यीशु ने पुरानी कलीसिया सहित केवल पुराने क्रम को ही आगे नहीं बढ़ाया, साथ ही ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि यीशु ने पूर्णतः नई कलीसिया की स्थापना नहीं की। उसकी कलीसिया पुराने नियम की कलीसिया की निरंतरता है।
सुसमाचारों में वर्णित लेखों के अनुसार यीशु ने तीन अवसरों पर कलीसिया का केवल एक्लेसिया नाम से वर्णन किया। वास्तव में ये ही वे स्थान हैं जहां मत्ती, मरकुस, लूका या यूहन्ना में एक्लेसिया शब्द आता है। ये तीनों पद्यांश मत्ती के सुसमाचार में हैं, 1:16:18 में और 2:18:17 में। मत्ती 16:18 में यीशु ने ये शब्द कहे, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। शब्द ओइकोडोमियो, जिसका यहां बनाना के रूप में अनुवाद किया गया है, वो किसी बिल्कुल नए निर्माण या किसी वस्तु के पुनर्निर्माण या पुनः स्थापना के बारे में बता सकता है जो पहले से ही विद्यमान है। यद्यपि यीशु ने स्पष्ट नहीं किया कि उसने इसे किस अर्थ में कहा, लेकिन रोमियो 11:11 में पौलुस की शिक्षा के अनुसार हमें इस मत का पक्ष लेना चाहिए कि यीशु पुराने नियम की कलीसिया का पुनर्निर्माण और पुनः स्थापना कर रहा था। मत्ती 18:17 में यीशु के वचन कम अस्पष्ट हैं। देखे वहां वो क्या कहता है, यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले के जैसा जान। इस पद में यीशु कलीसियाई अनुशासन के बारे में बात कर रहा था और उसका उपदेश था कि एक पश्चाताप ना करने वाले व्यक्ति को कलीसिया या मंडली के सामने लाया जाए। यीशु की सेवकाई के मूल संदर्भ में एकमात्र कलीसिया जो विद्यमान थी वह पूरे क्षेत्र में फैला यहूदी आराधनालय और यरूशलेम का मंदिर था। ये पुराने नियम इसराइल की मंडलियों के रूप थे, लेकिन फिर भी यीशु ने उन्हें कलीसिया कहा। पुराने नियम में कहा गया था कि विवादों को पुरनियों, याजकों और न्यायियों द्वारा सुलझाया जाए, जो मंडली के प्रतिनिधि थे जिन्हें न्याय करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसे हम निर्गमन 18 और व्यवस्था विवरण 1:19 जैसे स्थानों पर देखते हैं। यीशु ने अपने समय में इस सिद्धांत की पुष्टि की अपने श्रोताओं को याद दिलाते हुए कि इसराइल की मंडली के अंदर विवादों को हल करना अब भी उनकी जिम्मेदारी थी, परंतु यीशु ने अपने शब्दों को अपनी कलीसिया में लागू करने की भी इच्छा की, जिसका उसने मत्ती 16 में वर्णन किया था। इसीलिए मत्ती ने यीशु के शब्दों को हमारे लिए लिखा। आप देखते हैं यीशु और मत्ती के लिए पौलुस के समान ही नए नियम की कलीसिया पुराने नियम इसराइल की मंडलियों का विकसित रूप थी। यीशु इसराइल का स्थान कलीसिया को देने नहीं आया था, वो नए नियम की कलीसिया के रूप में इसराइल को बचाने और पुनः स्थापित करने आया था। जब हम पुरानी और नए नियम की कलीसियाओं के बीच निरंतरता को देखते हैं तो यीशु की केंद्रीय भूमिका को पहचानना महत्वपूर्ण है, जिसे वो इन दोनों कलीसियाओं को एक साथ बंधने में निभाता है। पहला, नया नियम यीशु को इसराइल को परमेश्वर द्वारा दिए गए वायदों की पूर्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसा हम रोमियो 8:1-4 और गलातियों 3:16-29 में देखते हैं, यीशु वफादार इसराइली है जो परमेश्वर की वाचा का पालन करता है और परमेश्वर द्वारा इब्राहिम और मूसा से प्रतिज्ञा की गई सारी आशीषों को प्राप्त करता है। और जैसा हम लुका 1:32 और प्रेरितों के काम 2:31-33 में सीखते हैं, वो दाऊद का पुत्र है जो दाऊद के सिंहासन को पुनः स्थापित करता है और इसराइल और यहूदा पर राज करता है। यीशु ने अतीत से संबंध विच्छेद नहीं किया, वो पुराने नियम की कलीसिया की पूर्ति है, उसका सबसे सिद्ध सदस्य और सेवक। और दूसरा, यीशु नए नियम की कलीसिया का संस्थापक है जिसने पुनः स्थापना और नवीनीकरण द्वारा असफल होती पुराने नियम की कलीसिया को नए नियम की कलीसिया में रूपांतरित कर दिया। पवित्र वचन इफिसियो 5:23 और कुलुसियो 1:18 में उसे कलीसिया का सिर कहता है। इफिसियो 5:22-33 और प्रकाशित वाक्या 19:1-10 में वो कलीसिया का पति है। और यीशु ही कलीसिया को नियुक्त करता है कि वो मत्ती 28:18-20 में यीशु द्वारा दी गई महान आज्ञा के अधिकार को प्राप्त करे। यीशु कलीसिया से प्रेम करता है, उसे स्वीकृति देता है और अधिकार देता है।
पुराने नियम की कलीसिया का यीशु के साथ संबंध ठीक वैसे ही है जैसा नए नियम की कलीसिया का यीशु के साथ संबंध है। कुछ मसीहों के लिए पुराना नियम कलीसिया शब्द ही अजीब है। हम सोच सकते हैं कि कलीसिया का जन्म पिंतिकोस के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हुआ, लेकिन यदि हम कलीसिया को परमेश्वर के ऐसे लोगों के रूप में देखते हैं जिनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है, परमेश्वर के लोग जिन्हें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के कार्य के द्वारा छुटकारा दिया है, तो पुराने नियम की कलीसिया विश्वासियों की देह है जो उस दिन के इंतजार में है जब परमेश्वर मसीह के आने पर उनके उद्धार के कार्य को पूरा करेगा। और इस प्रकार पुराने नियम की कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह पर क्रूस पर बहाए गए यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करती थी। पुराने नियम के मसीह विश्वासी और कलीसिया के सदस्य हमारे प्रभु यीशु द्वारा पूर्ण किए गए कार्य के इंतजार कर रहे हैं। वे परमेश्वर के सर्व सामर्थी मुफ्त अनुग्रह और करुणा पर विश्वास करते थे जो उनके पापों को क्षमा करके परमेश्वर के साथ उनके संबंध को पुनः स्थापित करेंगे। अतः जैसे कि पुराने नियम के विश्वासी और कलीसिया का संबंध परमेश्वर के साथ उनका संबंध बिल्कुल वैसा ही है जैसा परमेश्वर के साथ हमारा नए नियम के विश्वासियों और कलीसिया का संबंध है।
अब तक हमने पुराने नियम की पृष्ठभूमि और यीशु की संसार में सेवकाई के दृष्टिकोण से कलीसिया की स्वीकृति को देखा। अब हम इन बिंदुओं के कुछ आशयों को देखने के लिए तैयार हैं। जब हम महसूस करते हैं कि यीशु ने नए नियम की कलीसिया को पुराने नियम इसराइल के विकास और पुनः स्थापना के लिए नियुक्त किया, तो इसका एक महत्वपूर्ण आशय है कि पुराने नियम में इसराइल और नए नियम में मसीही कलीसिया के बीच मूलभूत निरंतरता है। व्यवहारिक स्तर पर हमें नए नियम में परमेश्वर के लोगों के समुदाय से अपनी पुराने नियम की जड़ों को प्रतिबिंबित करने की अपेक्षा रखनी चाहिए। निसंदेह कुछ बातें अलग हैं और नए नियम इन बदलावों का संकेत देता है, परंतु नया नियम यह भी सिखाता है कि कलीसिया बहुत कुछ इसराइल के समान है। निरंतरता के इतने अधिक बिंदु हैं कि हम उन सब का वर्णन नहीं कर सकते हैं, परंतु हम उनमें से 3 को देखेंगे। पहला, पुराने नियम की कलीसिया और नए नियम की कलीसिया के बीच उद्देश्य की बड़ी निरंतरता है। धर्मविज्ञानी प्रायः संसार के इतिहास का तीन चरणों में संक्षेपण करते हैं, सृष्टि, पाप और छुटकारा। सृष्टि के चरण में, जो उत्पत्ति एक और दो अध्यायों में वर्णित है, परमेश्वर ने संसार, पौधों, जीवों और मनुष्य को बनाया और संसार के एक विशेष हिस्से में उसने अदन की वाटिका बनाई और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यह मनुष्य की जिम्मेदारी थी कि वह पृथ्वी में भर जाए और उस पर अधिकार करे। उसे अदन की वाटिका के समान परमेश्वर की पवित्र प्रकट उपस्थिति के लिए उपयुक्त स्थान बनाए। पाप के चरण में, जो उत्पत्ति अध्याय 3 में लिखित है, मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और अदन की वाटिका से निकाल दिया गया और मानव के पाप में गिरने से संपूर्ण सृष्टि भ्रष्ट हो गई। पौलुस ने रोमियो 8:20-22 में इसका वर्णन किया। शेष इतिहास छुटकारे के चरण को बनाता है, जिसमें परमेश्वर मानवता को पुनः सिद्ध अवस्था में लाने और मानवता के द्वारा सृष्टि को पुनः उसकी प्राचीन अवस्था में लाने के लिए कार्य कर रहा है। छुटकारे की अवधि की अंतिम स्थिति होगी नया आकाश और नई पृथ्वी, जिसके बारे में हम यशाया 65:17-66:22, दूसरा पत्रस 3:13 और प्रकाशित वाक्य 21:1 में पढ़ते हैं। और मनुष्य और सृष्टि का ये छुटकारा सदा से दोनों नियमों की कलिसियाओं के लिए परमेश्वर का उद्देश्य रहा है। आधुनिक संसार में कलिसिया अब भी सृष्टि की पुनः स्थापना के इस लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। नए नियम की शिक्षाओं की प्राथमिकताओं के अनुसार हम इसे मुख्यतः सुसमाचार के प्रचार द्वारा करते हैं, ये जानते हुए कि मसीह में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति छुटकारे की अंतिम अवस्था की ओर एक और कदम का प्रतिनिधित्व करता है। हम इसे संसार में मसीहियों के रूप में रहने, पड़ोसियों के प्रति मसीह के प्रेम को दिखाने और परमेश्वर की महिमा, आदर और चरित्र को प्रकट करने के लिए अपने आसपास की संस्कृतियों को बदलने के द्वारा भी करते हैं। और हम इस आशा और प्रार्थना के साथ ये करते हैं कि एक दिन यीशु छुटकारे के कार्य को पूरा करने के लिए वापस आएगा। वर्तमान युग में पुराने नियम की कलिसिया और नए नियम की कलिसिया के बीच निरंतरता का दूसरा बिंदु यह है कि परमेश्वर के लोगों की दोनों मंडलियों में विश्वासी और अविश्वासी शामिल हैं। याद रखें कि पुराने और नए नियम में परमेश्वर की कलिसिया कभी सिद्ध नहीं थी। पुराने नियम में कुछ प्राचीन इसराइली परमेश्वर के प्रति वफादार थे और उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को पाया, परंतु दूसरे बहुत से लोगों ने अविश्वास में परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और ईश्वरीय शाप के भागी बन गए। इसे हम संपूर्ण पुराने नियम में देखते हैं, परंतु ये संभवतः परमेश्वर की वाचा की आशीषों और शापों के सारांशों में सर्वाधिक स्पष्ट है, जिन्हें हम लैबिया व्यवस्था 26 और व्यवस्था विवरण 27-30 अध्यायों में पाते हैं। और यही बात यीशु के अनुयायियों की मंडली नए नियम की कलिसिया के बारे में भी सत्य है। हमारी कलिसियाओं में सदा विश्वासियों के बीच अविश्वासी भी मिले रहते हैं। उदाहरण के लिए प्रेरितों के बीच यहूदा धोखेबाज था। इसे विशेष रूप से यूहन्ना 6:70-71 में बताया गया है और इसे हम उसके द्वारा मसीह को धोखा देने में भी देखते हैं। कलिसिया की मिलीजुली प्रकृति प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्यायों में कलिसियाओं को लिखे पत्रों में भी स्पष्ट है। प्रकाशित वाक्य की ये अध्याय कलिसिया के सच्चे विश्वासियों से अपेक्षा रखते हैं कि वे जय पाएंगे, परंतु वे ये चेतावनी भी देते हैं कि जय ना पाने वाले अपने अविश्वासी दिलों को प्रकट करेंगे। और पहला यूहन्ना की पत्री का अधिकांश भाग कलिसिया में सच्चे और झूठे विश्वासियों की पहचान के लिए समर्पित है। इससे बढ़कर बहुत से अन्य पद्यांश कलिसिया में झूठे शिक्षकों की चेतावनी देते हैं या विश्वास करने वालों को अपने विश्वास को साबित करने के लिए अंत तक स्थिर रहने की प्रेरणा देते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में पौलुस ने भी इस सत्य को पहचाना और लोगों को इस पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। देखें उसने वहां क्या लिखा। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। पौलुस चाहता था कि हर व्यक्ति इस बात को पहचान ले कि कलीसियाई सदस्यता और बपतिस्मा और विश्वास का अंगीकार जैसी बातें यीशु मसीह में उधार देने वाले विश्वास के निश्चित चिन्ह नहीं हैं। इन्हें तो वे लोग भी करते हैं जिन्होंने वास्तव में कभी मसीह पर विश्वास किया ही नहीं। इसलिए पौलुस ने कलीसिया में लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने आप को जांचे, निश्चित करें कि वे उद्धार के लिए मसीह पर वास्तव में भरोसा कर रहे हैं या नहीं। निसंदेह मनुष्य होने के नाते हम दूसरे व्यक्ति के दिल की अवस्था को नहीं जान सकते हैं। हम केवल उनके कार्यों को देख सकते हैं और उनके शब्दों को सुन सकते हैं। इसलिए प्रायः हमारे लिए ये बताना असंभव होता है कि सच्चा विश्वासी कौन है। परंतु फिर भी इस ज्ञान के द्वारा कि हमारी मंडलियों में अविश्वासी हो सकते हैं, अपने आप को और कलीसिया में दूसरों को देखने की हमारी रीति पर प्रभाव पड़ना चाहिए। हमें पूरी कलीसिया को निरंतर सिखाना और सुसमाचार का प्रचार करना याद रखना चाहिए ताकि वे लोग भी उद्धार पाएं जो अब तक विश्वास में नहीं आए हैं, यद्यपि हम नहीं जानते होंगे कि वे कौन हैं। हमें कलीसिया में उन लोगों को स्वीकार करना चाहिए जो परमेश्वर की खोज में हैं। उन्हें कलीसिया में आने से निरुत्साहित ना करें, चाहे उन्होंने अभी मसीह पर विश्वास ना किया हो। और हमें दूसरों के साथ धैर्यवान होना चाहिए ये जानते हुए कि विश्वास और परिपक्वता में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, उन लोगों में भी जो लंबे समय से कलीसिया में हैं। पुराने नियम की कलीसिया और नए नियम की कलीसिया के बीच निरंतरता का तीसरा बिंदु है कि परमेश्वर के सामने उनकी जिम्मेदारियां समान थीं। दोनों नियमों के परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से प्रेम करने, उसके राज्य को संसार में फैलाने और उसकी महिमा करने का उत्तरदायित्व दिया गया था। परमेश्वर के लिए प्रेम के संबंध में व्यवस्था विवरण 6:5 और 6 ने पुराने नियम की कलीसिया को परमेश्वर से दिल से प्रेम करना और पूरे मन से उसकी व्यवस्था को मानना सिखाया। इसी तरह नए नियम की कलीसिया को भी परमेश्वर से प्रेम करने और उसकी व्यवस्था को मानने के लिए बुलाया गया है, जैसे यीशु ने मत्ती 22:37 में सिखाया। संपूर्ण दिल से परमेश्वर से प्रेम करना व्यवस्था की सबसे बड़ी आज्ञा है, और जैसे 1 यूहन्ना 5:3 में यूहन्ना ने सिखाया, संपूर्ण दिल से परमेश्वर से प्रेम करने का परिणाम संपूर्ण दिल से उसकी आज्ञाओं को मानना होता है।
एक सवाल लोग प्राय पूछते हैं कि क्या नए नियम की कलीसिया के लिए पुराने नियम की व्यवस्था को मानना जरूरी है या नहीं। नहीं, इस अर्थ में कि पुराने नियम तोहरा में पाए जाने वाले उन विशिष्ट आदेशों को वास्तव में हमसे हटा लिया गया है। हमें अपने पुत्रों का खतना करने की आवश्यकता नहीं है। हमें वर्ष में 3 बार मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, और आप इसकी सूची बना सकते हैं। वास्तव में ये यरूशलेम की सभा का विचार विमर्श था जो प्रेरितों के काम 15 में लिखित है। लेकिन पुराने नियम तोहरा का उद्देश्य क्या है? इस अर्थ में कि तोहरा परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव को प्रकट करती है, और वो चरित्र और स्वभाव जिसे हमसे अपनाने की अपेक्षा की जाती है, उस अर्थ में हाँ, तोरा अब भी लघु है। और मेरा विचार है कि आप इसे पौलुस की पत्रियों में देखते हैं। पौलुस अपने पाठकों से कह सकता है, नहीं, तुम्हें उन सब बातों को करने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वतंत्र हो, इसलिए निसंदेह तुम चोरी नहीं करोगे, तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम लालच नहीं करोगे, तुम व्यभिचार नहीं करोगे। अतः क्या मसीहों को अपने उद्धार के लिए तोहरा को मानना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। परंतु उन लोगों के रूप में जिन्हें मुफ्त में उद्धार दिया गया है, हमसे अपेक्षित है कि हम परमेश्वर के जीवन को प्रदर्शित करें। हां,
ध्यान दें कि पुराने और नए दोनों नियमों में परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के राज्य को फैलाना था। पुराने नियम की कलीसिया जानती थी कि उत्पत्ति 17:4-5 में परमेश्वर ने वायदा किया था कि इब्राहिम बहुत सी जातियों का पिता बनेगा, और जैसा रोमियों 4:13 में पौलुस ने सिखाया, पुराने नियम की कलीसिया जानती थी कि इस वायदे ने उन्हें जिम्मेदारी दी कि वे विश्वास के द्वारा पूरे संसार में परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। इसी प्रकार नए नियम की कलीसिया प्रत्येक देश में सुसमाचार को पहुंचाने के द्वारा अब भी इस योजना को पूरा कर रही है। जैसे यीशु ने मत्ती 28:19 में अपनी कलीसिया को आज्ञा दी, जाओ और सारी जातियों को चेले बनाओ। पुराने नियम इसराइल और नए नियम की कलीसिया की तीसरी समान जिम्मेदारी परमेश्वर की महिमा करनी थी। पुराने नियम की कलीसिया के लिए इसे हम भजन 86:12, भजन 115:18 और पुराने नियम के संसार के बारे में नए नियम के विवरणों में भी देखते हैं, जैसे प्रेरितों के काम 17:24-28। इस तथ्य का ये भी निहितार्थ है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, जैसा उत्पत्ति 1:27 सिखाता है। जो लोगों को राजाओं से प्रेम करने, आज्ञा मानने और उनकी महिमा करने की याद दिलाती थीं, परमेश्वर के स्वरूप के रूप में मनुष्यों को परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया गया है। और इसी प्रकार नए नियम की कलीसिया भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए है। यह 1 कुरिन्थियों 10:31, 1 पत्रस 4:11, प्रकाशित वाक्य 4:11 और बहुत से अन्य स्थानों पर सिखाया गया है। परमेश्वर द्वारा कलीसिया को दिए गए उत्तरदायित्व बोझ नहीं है। यदि हम मसीह में हैं, यदि हमें अपनी योग्यता के आधार पर परमेश्वर के सामने खड़ा होना होता तो हम अपनी जिम्मेदारियों के भार तले कुचले जाते, परंतु मसीह में कलीसिया में सच्चे विश्वासी दंड से मुक्त हैं। असफलता के भय के बिना परमेश्वर के राज्य को फैलाने, उसकी व्यवस्था को मानने और उसकी महिमा के लिए कार्य कर सकते हैं। निसंदेह सफलता निश्चित है, यद्यपि हमें अल्पकालिक गतिरोधों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इतिहास परमेश्वर की निश्चित विजय की ओर बढ़ रहा है और ये कलीसिया के द्वारा बढ़ रहा है। अतः हम जितने अधिक आज्ञाकारी होंगे, जितनी अधिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, उतनी ही जल्दी परमेश्वर अपने राज्य को उसकी महिमामय पूर्ति में ले आएगा।
अपनी आरंभिक अवस्थाओं से कलीसिया के पुराने नियम में एक ऐसी देह के रूप में विकास को देखने से जिसका नए नियम में यीशु ने समर्थन किया, ये स्पष्ट है कि कलीसिया पूरी तरह परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत है। कलीसिया के अस्तित्व इस कारण है क्योंकि परमेश्वर चाहता है यह बनी रहे, और इसलिए क्योंकि ये उसके उद्देश्य को पूरा करती है। ये केवल मानवीय खोज नहीं है और यह बाइबल के धर्म का भ्रष्ट रूप नहीं है। यह मसीह की दुल्हन और देह है, परमेश्वर के प्रिय और उसके सेवा और महिमा के लिए समर्पित।
कलीसिया की स्वीकृति की इस समझ को ध्यान में रखते हुए हम अपने दूसरे मुख्य विषय पर आने के लिए तैयार हैं, ये तथ्य कि कलीसिया पवित्र है। बाइबल में पवित्रता के विचार को बताने के लिए बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया है। नए नियम में कलीसिया को पवित्र या शुद्ध की गई बताया गया है, और जो लोग कलीसिया के भाग हैं उन्हें संत कहा गया है। ये तीनों शब्द पवित्र, शुद्ध किया गया और संत यूनानी के एक ही शब्द समूह से आते हैं। पवित्र विशेषण हगियोस का अनुवाद है। शुद्ध किया गया हगियाजो क्रिया से है जिसका अर्थ है पवित्र बनाना, और संत हगियोस संज्ञा से है अर्थ है पवित्र व्यक्ति। पुराने नियम में इब्रानी शब्द भी इन्हीं विचारों को प्रकट करते हैं, जैसे विशेषण कदोश अर्थ पवित्र, क्रिया कदश अर्थ पवित्र बनाना, और संज्ञा कोदेश अर्थ पवित्र व्यक्ति। अब जब हम पवित्रता की बात करते हैं तो बहुत से मसीहियों का मानना है कि पवित्रता वो है जो परमेश्वर को सृष्टि से अलग ठहराती है। प्रायः ये कहा जाता है कि परमेश्वर की पवित्रता उसके पूरी तरह अलग होने या अपनी सृष्टि से पूर्णतः अलग होने का गुण है। परंतु पवित्र वचन में पवित्र शब्द को केवल इसी अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया है। बाइबल प्राणियों या वस्तुओं को भी पवित्र कहती है जब उनमें विशेष गुण हों जो परमेश्वर की पवित्रता को प्रतिबिंबित करें, और इसी अर्थ में प्रेरितों का विश्वास कथन कहता है कि कलीसिया पवित्र है। हम कलीसिया के पवित्र होने के विचार को दो भागों में देखेंगे। पहला, हम पवित्र शब्द की परिभाषा को देखेंगे, और दूसरा, हम इस परिभाषा का प्रयोग उन लोगों की पहचान करने के लिए करेंगे जो पवित्र हैं। आइए पवित्रता की बाइबल की परिभाषा से शुरू करें। पवित्र वचन में पवित्रता का विचार कठिन है, परंतु ये कहना सही है कि जब बाइबल किसी व्यक्ति या वस्तु को पवित्र कहती है तो मूलभूत विचार ये है कि वो नैतिक रूप से शुद्ध है। और एक अर्थ में पवित्र उन लोगों या वस्तुओं को भी बताता है जिन्हें परमेश्वर की विशेष सेवा के लिए अलग किया गया है। आइए हम नैतिक शुद्धता से शुरू करके इस परिभाषा के दोनों पहलुओं को देखें। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु नैतिक रूप से शुद्ध है तो हमारा मतलब होता है कि ये पाप और भ्रष्टाचार से मुक्त है। नैतिक शुद्धता के अर्थ में पवित्रता की जड़ें परमेश्वर के चरित्र में है। पवित्र वचन परमेश्वर को बहुत से स्थानों पर पवित्र कहता है, जैसे दूसरा राजा 19:22, नीति वचन 9:10, यशाया 30:11-15 और पहला योहन्ना 2:20 में।
ये केवल इतना नहीं है कि परमेश्वर हमसे बड़ा है, ये केवल इतना नहीं है कि परमेश्वर असीम और हम सीमित हैं, परंतु ये कि नैतिक रूप से वह हमसे अलग है। उसमें कोई अंधकार या बदलने वाली छाया नहीं है, उसमें कोई बुरा आवेग या गलत करने की प्रवृत्ति नहीं है, उसमें बुराई करने का थोड़ी सी भी संकेत या इच्छा नहीं है।
परमेश्वर पूर्णतः पवित्र है, इसलिए जो कुछ भी पाप पूर्ण उसकी उपस्थिति में आता है वो उसके न्याय और क्रोध के अधीन होता है। इसे हम विभिन्न स्थानों पर देखते हैं, जैसे पहला शमूएल 6:20, दूसरा राजा 24:3 और इब्रानियों 12:14। यद्यपि परमेश्वर कुछ समय के लिए न्याय को रोक सकता है, लेकिन उसकी पवित्र उपस्थिति अंततः उन्हें नाश कर देगी जिनके पापों को ढांपा नहीं गया है। इसलिए उसकी उपस्थिति में जाने से पहले किसी भी व्यक्ति या वस्तु को पवित्र किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यशाया 6:3-7 में यशाया के शब्दों को देखें। सराप एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीरज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया, और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। इस पद्यांश में यशाया भयभीत हो गया कि वो पवित्र यहोवा की विशेष उपस्थिति में अपने अपराध या पाप के कारण नाश हो जाएगा। अतः सराप परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने परमेश्वर की पवित्र वेदी पर से एक गर्म अंगारा उठाकर यशाया के पाप को दूर कर दिया। इस शुद्धिकरण से यशाया पाप से शुद्ध हो गया, वो पवित्र बन गया और अपनी नई पवित्रता के कारण वो न्याय का भागी बने बिना परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो सका। जैसा हम यशाया अध्याय 6 में देखते हैं, परमेश्वर की पवित्रता उसका एक सूचनीय गुण है, एक गुण जो उसकी सिद्ध और पूर्ण विशेषता है, परंतु वो सीमित तरीकों से उसके सृष्टि की विशेषता भी बन सकता है। विश्वासियों के लिए पवित्र बनने की बाइबल की बहुत सारी आज्ञाओं के पीछे परमेश्वर की यह सूचनीय पवित्रता है, जैसे इफिसियों 1:4, इब्रानियों 12:14 और पहला पत्रस 1:15-16 में हमें परमेश्वर की तरह नैतिक रूप से शुद्ध बनने का प्रयास करना है। निसंदेह हमारी अपनी सामर्थ्य से हम इस प्रयास में कभी सफल नहीं हो सकते, परंतु स्वयं मसीह में सिद्ध नैतिक शुद्धता है और हम उसमें हैं। उसकी धार्मिकता हमें दी गई है और हमें पूर्णता शुद्ध पाप और अशुद्धता से पूरी तरह मुक्त गिना गया है। पवित्र शब्द की हमारी परिभाषा का दूसरा पहलू है कि ये ऐसे लोगों या वस्तुओं को बताता है जो परमेश्वर की विशेष सेवा के लिए अलग किए गए हैं। इस अर्थ में वस्तुएं पवित्र हो सकती हैं चाहे हम नैतिक रूप से शुद्ध ना हों। केवल एक उदाहरण के लिए देखें पौलुस ने पहला कोरिन्थियों 7:14 में क्या लिखा, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। यहां पौलुस ने कहा कि जब एक विश्वासी का अविश्वासी से विवाह हुआ हो तो अविश्वासी पवित्र बन जाता है, या दूसरे अनुवादों के अनुसार अविश्वासी को शुद्ध किया जाता है। विचार ये है कि अविश्वासी परमेश्वर के साथ समान हो जाता है और उसकी सेवा के लिए उपयोगी बनाया जाता है। यद्यपि अविश्वासी को परमेश्वर द्वारा मसीह में नैतिक रूप से शुद्ध नहीं किया गया है।
कुछ मसीह इस विचार को अजीब मानते हैं कि परमेश्वर अपूर्ण और अशुद्ध लोगों को अपनी सेवा के लिए अलग करता है, परंतु यदि हम इसके बारे में सोचें, बाइबल ऐसे बहुत से अविश्वासियों का उदाहरण देती है जिन्हें परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अलग किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि प्रेरित यहूदा ने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता को धोखा दिया। जैसा स्वयं यीशु ने सिखाया, यहूदा को उसी उद्देश्य के लिए चुना गया था और इस धोखे के परिणाम स्वरूप परमेश्वर को सर्वाधिक शुद्ध पवित्र भेंट चढ़ाई गई, उसके पुत्र की अनमोल मृत्यु। और यदि परमेश्वर दुष्ट अविश्वासियों को भी अपनी सेवा के लिए प्रयोग कर सकता है तो उससे प्रेम करने वाले पवित्र लोगों की विशेष सेवा के द्वारा उससे कितनी अधिक महिमा मिलेगी।
अब जैसा हमने देखा, बाइबल में पवित्रता के विचार के कई आयाम हैं, इसलिए हमें यह समझने में सावधान होना चाहिए कि जब पवित्र वचन कलीसिया के वर्णन के लिए पवित्र या शुद्ध किया गया या संतों जैसे शब्दों का प्रयोग करता है तो उनका क्या मतलब है। कई बार बाइबल इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करती है कि कलीसिया में सच्चे विश्वासी नैतिक रूप से शुद्ध होते हैं क्योंकि मसीह की पवित्रता उन्हें दी गई है। दूसरे समयों पर ये ऐसे लोगों को बताती है जो परमेश्वर की विशेष सेवा के लिए संसार से अलग किए गए हैं, चाहे वे सच्चे विश्वासी ना हों। और कुछ मामलों में ये इस विचार को बताती है कि सच्चे विश्वासियों को परमेश्वर की विशेष सेवा के लिए अलग किया गया है। चाहे जो भी हो, एक बात हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु जो पवित्र है वो परमेश्वर के लिए विशेष है। हम परमेश्वर के नाम का सम्मान करते हैं, उसे व्यर्थ में लेने से इनकार करते हैं क्योंकि वो पवित्र है। हम बाइबल को मानते हैं क्योंकि ये हमारे पवित्र परमेश्वर का पवित्र वचन है। हम जीवन के हर पहलू में नैतिक शुद्धता का सम्मान करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, ये जानते हुए कि प्रभु हमें पवित्र जीवन के लिए बुलाता है और हम पवित्र कलीसिया में भाग लेते हैं और उसके अधीन रहते हैं। जहां कहीं पवित्रता है वहां परमेश्वर का हाथ है और हम इसके सम्मान का विशेष ध्यान रखते हैं। पवित्र की इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए आइए हम उन लोगों की पहचान करने के लिए इसका प्रयोग करें जो पवित्र हैं। विस्तृत अर्थ में बाइबल लोगों को तब पवित्र कहती है जब परमेश्वर की विशेष सेवा में उपयोगी बनने के लिए उन्हें शेष संसार से अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए संपूर्ण पुराने नियम इसराइल को निरंतर पवित्र कहा जाता था क्योंकि परमेश्वर ने उस जाति के साथ वाचा बांधी थी। हम इसे विभिन्न स्थानों पर देखते हैं, जैसे निर्गमन 19:5-6, व्यवस्था विवरण 7:6-9 और 28:9 और यहेजकेल 37:26-28। और ये विषय नए नियम की कलीसिया में भी जारी रहता है। उदाहरण के लिए लूका 1:72 बताता है कि यीशु परमेश्वर की पवित्र वाचा को पूरा करने आया है। और चूंकि कलीसिया को नई वाचा का नवीनीकृत और पुनः स्थापित इसराइल माना जाता है, इसलिए ये भी पवित्र है। हम इसे कुलुसियों 3:12, इब्रानियों 10:29 और कई अन्य स्थानों पर देखते हैं। एक उदाहरण, पहला पत्रस 2:9 में नए नियम की कलीसिया के लिए पत्रस के शब्दों को सुने। तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। यहां पत्रस पुराने नियम के कई पद्यांशों का उपयोग करता है जो इसराइल की पवित्रता को बताते हैं, परंतु वो उन्हें कलीसिया पर लागू करता है। उसका बिंदु ये था कि पुराने और नए नियम दोनों में कलीसिया वही एक पवित्र समूह है। जैसा हमने देखा, लेकिन इसराइल या नए नियम की कलीसिया में प्रत्येक व्यक्ति सच्चा विश्वासी नहीं था, फिर भी उन सबको पवित्र माना गया क्योंकि वे परमेश्वर की वाचा के समुदाय के हिस्से थे, अर्थात वे लोग जो परमेश्वर के साथ वाचा में थे। वाचा के समुदाय में विश्वासियों के लिए उनकी पवित्रता अविश्वासियों की पवित्रता से बढ़कर थी। अविश्वासी केवल इसी कारण पवित्र थे क्योंकि उन्हें परमेश्वर के लिए अलग किया गया था, परंतु विश्वासी न केवल इस कारण पवित्र थे कि उन्हें अलग किया गया था, बल्कि इस कारण भी कि मसीह में वे नैतिक रूप से शुद्ध और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे। निसंदेह लक्ष्य हमेशा ये था कि संपूर्ण वाचा का समुदाय विश्वास करे, हर व्यक्ति परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे और नैतिक रूप से शुद्ध जीवन बिताए। पवित्र लोगों के बारे में सोचने का एक सहायक तरीका दृश्य कलीसिया और अदृश्य कलीसिया के बीच पारंपरिक अंतर में पाया जा सकता है। आइए हम दृश्य कलीसिया से शुरू करके इनमें से प्रत्येक श्रेणी को देखें।
दृश्य कलीसिया वो कलीसिया है जिसे हम देख सकते हैं। वे सारे संस्थान जो यीशु मसीह के पीछे चलने का दावा करती हैं, आज संसार में परमेश्वर के उद्देश्य और वचन का पालन करने का दावा करती हैं। इसमें बहुसंख्या संस्थान शामिल है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो किसी विशेष संस्थान से संबंधित नहीं है लेकिन स्वयं को मसीह का अनुयायी मानते हैं।
किसी भी समय लोगों के दिलों की अवस्था का ध्यान रखे बिना वो प्रत्येक व्यक्ति दृश्य कलीसिया में शामिल है जो किसी एकत्रित कलीसिया में नियमित भाग लेता है। कई ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा लोगों को दृश्य कलीसिया का हिस्सा गिना जा सकता है। उन्हें परमेश्वर की वाचा में प्रमाणित किया जा सकता है, जैसे नए नियम में बपतिस्मा या पुराने नियम में खतना, या वे मसीह पर विश्वास का अंगीकार कर सकते हैं। उन कलीसियाओं में जहां आधिकारिक सदस्यता नहीं रखी जाती या जो वाचा की पुष्टि करने के रीति रिवाजों जैसे बपतिस्मा को नहीं मानते, उन्हें वाचा के सदस्य माना जा सकता है केवल इसलिए क्योंकि वे निरंतर कलीसिया की शिक्षा को मानते हैं, या जैसे पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 7:14 में सिखाया, उनके पति या पत्नी विश्वासी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पुराने नियम में इसराइल की संपूर्ण जाति कलीसिया का हिस्सा थी। यद्यपि हर व्यक्ति के पास उद्धार देने वाला विश्वास नहीं था, वे केवल उस जाति में शामिल थे। इससे आगे, जैसा परमेश्वर ने उत्पत्ति 17 में निर्देश दिया, पुरुषों के खतने के द्वारा उन्हें परमेश्वर की वाचा में प्रमाणित किया गया था। नए नियम में हम कुछ ऐसा ही देखते हैं। कलीसिया की सभाओं में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कलीसिया का हिस्सा माना जाता था। इसमें वो प्रत्येक व्यक्ति शामिल था जो विश्वास का अंगीकार करे, प्रत्येक जिसने बपतिस्मा लिया हो, विश्वासियों के बच्चे और जीवन साथी, और उनके घरेलू सेवक और दास। उदाहरण के लिए, जब पौलुस ने विभिन्न कलीसियाओं को पत्र लिखा, तो उसने इच्छा की कि उन पत्रों को उन प्रत्येक व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाए जो उन कलीसियाओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था। और जैसा कि विश्वासियों को अपने विश्वास को जांचने के उसके उपदेशों के द्वारा हम देख सकते हैं कि पौलुस को पूर्ण अपेक्षा थी कि कलीसिया में अविश्वासी होंगे। इसे हम दूसरा कुरिन्थियों 13:5 जैसे पद्यांशों में देखते हैं। गेहूं और खरपतवार के अपने दृष्टांत में यीशु की भी यही अपेक्षा थी, मत्ती 13:24-30 में, जहां उसने अविश्वासियों को कलीसिया से बाहर ना करने के लिए कहा। कलीसियाओं को लिखे पत्रों में भी हम इसी बात को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:3 में, जहां यीशु ने निरंतर उन्हें उत्साहित किया कि वे जाय पाएं और अंत तक स्थिर रहें। और हम नई वाचा को तोड़ने के विरुद्ध दी गई चेतावनी में इसी बात को देखते हैं, जैसे इब्रानियों 6:4-8 और 10:29 में। एक उदाहरण के लिए इब्रानियों 10:29 के इन शब्दों को देखें। तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। इस पद में इब्रानियों के लेखक ने संकेत दिया कि परमेश्वर के साथ वाचा में पवित्र किए जाने के बाद मसीह को त्यागना संभव था। जैसा कि शेष अध्याय स्पष्ट करते हैं, यहां बताया गया दंड नरक में अनंतकालीन कष्ट है।
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि दृश्य कलीसिया में गेहूं और जंगली दाने हमेशा रहेंगे, जैसे यीशु ने कहा। आपके पास सच्चे परमेश्वर के लोग और ऐसे लोग भी होंगे जो वफादार प्रतीत होते हैं, जैसे यीशु के साथ यहूदा और पौलुस के साथ देमास।
दृश्य कलीसिया के मिश्रित चरित्र का अर्थ है कि हमें कलीसिया में अविश्वास और गलती के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए। साथ ही कलीसिया की पवित्रता उस समय भी बनी रहती है जब उसकी सेवकायों में अविश्वासी शामिल हों। अतः हम संस्कारों, परमेश्वर की पवित्र आज्ञाओं का आदर करते हैं और हम परमेश्वर के पवित्र वचन का आदर करते हैं, चाहे इसका बुरी तरह या पाखंडपूर्ण रीति से प्रचार किया जाए, जैसा पौलुस ने फिलिपियों 1:14-18 में सिखाया। कलीसिया की पवित्रता परमेश्वर की जगह कलीसिया को देखने के विरुद्ध चेतावनी भी है, और ये आश्वासन भी कि मानवीय पाप और अविश्वास के बावजूद परमेश्वर कलीसिया को प्रभावशाली रीति से प्रयोग करता है। दृश्य कलीसिया की इस समझ को ध्यान में रखते हुए आइए हम अदृश्य कलीसिया के विचार को देखें।
दृश्य कलीसिया प्रत्येक रविवार को स्थानीय समुदाय और संसार भर में विश्वासियों का एक साथ एकत्रित होना है और ये उन लोगों से बनी होती है जिन्होंने अपने विश्वास के बाहरी अंगीकरण को प्रकट किया हो। ये ऐसे लोगों की सभा है जो एक साथ मिलते हैं और बपतिस्मा एवं प्रभु भोज के संस्कारों में भाग लेते हैं और उसके द्वारा ये संकेत देते हैं कि वे परमेश्वर की दृष्टिगोचर कलीसिया के सक्रिय सदस्य हैं।
दृश्य कलीसिया में वो प्रत्येक व्यक्ति शामिल है जो परमेश्वर की वाचा के समुदाय का हिस्सा है, जबकि अदृश्य कलीसिया केवल उन लोगों से निर्मित है जो उद्धार में मसीह के साथ संगठित हैं। इस कारण कई बार इसे सच्ची कलीसिया कहा जाता है। हम सोच सकते हैं कि अदृश्य कलीसिया केवल एक छोटा झुंड है जो पूर्णतः दृश्य कलीसिया में शामिल है। सामान्यतः हम दृश्य कलीसिया के अधिकांश लोगों को संदेह का लाभ देते हुए उनसे इस प्रकार व्यवहार करते हैं मानो उन सब ने वास्तव में उद्धार पा लिया है, परंतु वास्तविकता ये है कि केवल परमेश्वर ही दिल को देख सकता है। जैसा हम भजन 44:21 और प्रेरितों के काम 15:8 जैसे वचनों में देखते हैं, और परिणाम स्वरूप इतिहास के इस चरण में पूर्ण निश्चितता से केवल परमेश्वर ही अदृश्य कलीसिया को पहचान सकता है। यद्यपि हम मुख्यतः अदृश्य कलीसिया पर ध्यान देंगे जैसे ये किसी भी निश्चित समय में पृथ्वी पर विद्यमान होती है, लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण है कि अदृश्य कलीसिया में वो प्रत्येक विश्वासी भी शामिल हैं जो मसीह की सांसारिक सेवकाई के पूर्व और पश्चात इस संसार में जीवित रहा। आमतौर पर पवित्र वचन दृश्य कलीसिया को संबोधित करता है न कि अदृश्य कलीसिया को, परंतु ये सामान्यतः अपने श्रोताओं के उनके उद्धार के संबंध में संदेह का लाभ देता है। कुछ पत्र अपने श्रोताओं के बारे में ज्यादा आशावादी नहीं हैं, जैसे 1 कुरिन्थियों 5 और 1 तीमुथियुस 1:19-20 और प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्यायों में। परंतु सामान्यतः पवित्र वचन के लेखक अपने पाठकों से अपेक्षा रखते थे कि वे परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखें और विश्वास योग्यता से उसकी आज्ञा माने। इसका लक्ष्य ये था कि हर व्यक्ति विश्वास योग्य प्रमाणित हो, संपूर्ण दृश्य में कलीसिया अदृश्य कलीसिया का हिस्सा हो। जब यीशु लौटेगा वो अपनी कलीसिया को पूर्णतः शुद्ध करेगा, वो सारे अविश्वासियों को इससे दूर करेगा जिससे अदृश्य कलीसिया दृश्य कलीसिया के समान बन जाए। इसे हम विभिन्न स्थानों पर देखते हैं, जैसे 7:21-23 और 13:24-30, 1 कुरिन्थियों 3:12-15 और 1 पत्रस 4:17-19। परंतु तब तक अदृश्य कलीसिया के लोगों की पहचान केवल परमेश्वर को ही होगी। इस तथ्य के उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं जो स्वयं के मसीह होने का दावा करता है कि वर्तमान में दृश्य कलीसिया के अंदर एक अदृश्य कलीसिया है, और सबसे बड़ा निहितार्थ है कि कलीसिया को नियमित रूप से सुसमाचार सुनने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि दृश्य कलीसिया में अविश्वासी हैं और इसका अर्थ है कि कलीसिया की सदस्यता हमारे उद्धार की गारंटी के लिए पर्याप्त नहीं है, और इस कारण हमें निरंतर सिखाना और छुटकारे का सुसमाचार का प्रचार करना है, न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे लिए भी। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारी मंडली के अविश्वासियों को मसीह में आने और अदृश्य कलीसिया का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया जाए।
प्रेरितों का विश्वास पुष्टि करता है कि कलीसिया पवित्र है, कलीसिया परमेश्वर के साथ वाचा में है, इसे परमेश्वर के लोगों के रूप में अलग किया गया है, ये परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित है। कलीसिया के अंतिम लक्ष्य नैतिक पवित्रता है। कलीसिया में विश्वासियों का वर्तमान अनुभव उन्हें मसीह की नैतिक पवित्रता में छिपा लेता है। जब हम स्वयं को परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति समर्पित करते हैं तो हमें पापों से शुद्ध किया जाता है और सिद्ध पवित्रता के लक्ष्य के निकट लाया जाता है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है।
अब जबकि हम कलीसिया की दिव्य स्वीकृति जो कलीसिया को उसका महत्व और अधिकार देती है, और इस विचार को देख चुके हैं कि कलीसिया परमेश्वर के लिए पवित्र है, तो हम अपने तीसरे बिंदु के लिए तैयार हैं। ये तथ्य कि कलीसिया सार्वभौमिक या वैश्विक है। सार्वभौमिक शब्द की हमारी चर्चा तीन भागों में विभाजित होगी। पहला, हम सार्वभौमिक शब्द की एक परिभाषा देंगे। दूसरा, हम दृश्य कलीसिया की सार्वभौमिकता को देखेंगे। और तीसरा, हम अदृश्य कलीसिया की सार्वभौमिकता का रुख करेंगे। आइए सार्वभौमिक शब्द की परिभाषा से शुरुआत करें। जैसा हमने पहले के अध्याय में बताया, सार्वभौमिक शब्द का अर्थ है वैश्विक, या जिसमें सारी मंडलियों के सारे मसीही शामिल हों। कैथोलिक शब्द लैटिन भाषा के कैथोलिकस का अनुवाद है, जो यूनानी संबंध सूचक शब्द काटा और विशेषण होलोस से लिया गया है, जिनका अर्थ है संपूर्ण या पूर्ण। यह रोमन कैथोलिक कलीसिया का उल्लेख नहीं है, बल्कि यह विश्वास योग्यता से मसीह के पीछे चलने वाली सारी कलीसियाओं के बीच विद्यमान एकता का वर्णन है। इस श्रृंखला के पिछले अध्यायों से आपको याद होगा कि प्रेरितों के विश्वास कथन का जो रूप हमारे पास आज है, उसे आरंभिक बपतिस्मा के विश्वास कथनों से विकसित किया गया है। इन विश्वास कथनों के लिखे जाने के समय संसार भर की विभिन्न मसीह कलीसियाएं एकल कलीसियाएं शासन के अधीन आई भी नहीं थीं। इसलिए जब प्रेरितों का विश्वास कथन कलीसिया की सार्वभौमिकता के बारे में बात करता है, तो ये सारी मसीही मंडलियों के एक संगठन को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, बल्कि ये पवित्र आत्मा की उस एकता की बात करता है जो हमारी संस्थागत भिन्नताओं के बावजूद सारी वैध मसीह कलीसियाओं के बीच विद्यमान है। इतिहास के इस चरण में कैथोलिक शब्द सबको शामिल करने वाला था। ये प्रत्येक मसीही मंडली को कलीसिया का नाम देने के लिए था। ये विचार पहला कुरिन्थियों 1:2 में पौलुस की शिक्षा के अनुरूप था, जहां उसने अपने पत्र को इस प्रकार संबोधित किया, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। यहां पौलुस संकेत देता है कि कुरिन्थियुस की विभिन्न कलीसियाएं, जिन्हें वो सामूहिक रूप से कलीसिया जो कुरिन्थियुस में है, एक विस्तृत कलीसिया का हिस्सा थीं, जिसमें वे सब लोग शामिल थे जो मसीह के नाम को पुकारते थे, चाहे वे कहीं भी रहते हों। तीसरी सदी के मध्य में कर्थेज के सिप्रियन ने कलीसिया में बिशप और याचकों की भूमिका पर बल देना शुरू किया। अपनी पत्री 68 में उसने कहा, कलीसिया वे लोग हैं जो एक याजक में संगठित हैं। कलीसिया जो सार्वभौमिक और एक है, वो अलग या विभाजित नहीं है, परंतु निसंदेह एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाले याजकों की सीमेंट द्वारा एक साथ जुड़ी और बंधी हुई है। सिप्रियन के लिए कलीसिया की एकता उसके याजकों और सेवकाई की एकता में थी। इस विचार के बढ़ने के साथ मसीही भी कलीसिया के शासन की एकता में कलीसिया की एकता की पुष्टि करने लगे। कलीसिया एकमात्र ऐसी संस्थान थी जो पूरे संसार में हर जगह विद्यमान थी, क्योंकि उसके बिशप और याजक पूरे संसार में थे। इस बिंदु पर भी, यद्यपि कैथोलिक शब्द सबको शामिल करने वाला था, जिसमें वे सारे लोग और मंडलियां शामिल थीं जो यीशु मसीह के नाम को पुकारती थी और जो कलीसिया के पारंपरिक सिद्धांतों के प्रति विश्वास योग्य थे, लेकिन बाद में कलीसिया टुकड़ों में विभाजित हो गई। उदाहरण के लिए 1054 ईस्वी में रोमन कैथोलिक कलीसिया ने पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं का बहिष्कार कर दिया और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं ने रोमन कैथोलिक कलीसिया का बहिष्कार कर दिया। उस समय ये कलीसियाएं कैथोलिक का प्रयोग एक नए विशेष अर्थ में करने लगीं, अपनी कलीसियाओं के कैथोलिक या सार्वभौमिक होने का दावा करके। प्रत्येक कलीसिया ने स्वयं की एकमात्र वैध कलीसिया के रूप में पहचान कराना और विरोधी कलीसियाओं को दोषी ठहराना चाहा। बाद में 16वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलन में अधिकांश प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने एक अलग रुख अपनाया। मूलतः वे कैथोलिक शब्द के पहले के सबको शामिल करने वाले अर्थ की अपील करते हुए विश्वास कथन के वास्तविक अर्थ की ओर लौटे। पवित्र वचन और प्रेरितों के विश्वास कथन दोनों की सहमति में प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने आत्मा की एकता की पुष्टि की, जिसमें मसीह के अधिकार के अधीन सारी मसीही कलीसियाएं शामिल हैं, और उन्होंने पहचाना कि उनमें से प्रत्येक संस्थान के द्वारा किए गए सकारात्मक योगदानों को खोए बिना कलीसिया के शासन के क्षेत्र में एकरूपता के बिना भी इस एकता को बनाए रखा जा सकता है। आधुनिक संसार में कलीसिया की सार्वभौमिकता को पहचानने का अर्थ है उस प्रत्येक कलीसिया की वैधता की पुष्टि करना जो प्रेरितों के विश्वास कथन में प्रमाणित सिद्धांतों का पालन करती है। सारी विश्वास योग्य कलीसियाओं में सारे विश्वासी मसीह की वाचा के अधिकार के अधीन हैं, और सारे सच्चे विश्वासियों को पवित्र आत्मा के वरदान की आशीष दी जाती है, और इस कारण हमें प्रत्येक विश्वास योग्य कलीसिया के प्रत्येक सच्चे मसीही के वरदानों से लाभ उठाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, और जितना हो सके हमें उनके साथ सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। कैथोलिक शब्द की इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए आइए देखें कि दृश्य कलीसिया को किस प्रकार कैथोलिक कहा जा सकता है। जब हम सार्वभौमिकता की अपनी समझ को दृश्य कलीसिया की अपनी समझ से मिलाते हैं तो हम दृश्य कैथोलिक कलीसिया को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। संसार भर के सारे लोगों की संगति जो परमेश्वर के साथ वाचा में मसीह के अधिकार के अधीन है, स्पष्टतः ये संगति आत्मा की है न कि कलीसियाई शासन की। कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जिसका शासन सारी मसीही मंडलियों पर हो। इसके बजाय दृश्य कलीसिया की एकता इस तथ्य पर आधारित है कि प्रत्येक कलीसिया की उसी परमेश्वर से वाचा है और वे उसी मसीह की वाचा के अधिकार के अधीन हैं। ऐतिहासिक रूप से दृश्य कलीसिया ने अपनी सार्वभौमिकता को विभिन्न तरीकों से खोजा है। कुछ परंपराओं में इसका पता कलीसियाई शासन द्वारा लगाया जाता है। कलीसिया जब बढ़ती है तो फैलती है। प्रत्येक नए सेवक को पुराने सेवकों द्वारा सिर पर हाथ रखकर नियुक्त किया जाता है, परंतु सामान्यतः प्रोटेस्टेंट मसीहों ने इस बात पर बल दिया है कि संपूर्ण कलीसिया की एकता मसीह और आत्मा के कार्य पर हमारे विश्वास पर निर्भर है, न कि नियुक्त सेवकों और याचकों पर। इस कारण नई मंडलियां कहीं भी खड़ी हो सकती हैं जहां आत्मा की एकता विद्यमान है, जहां कहीं परमेश्वर के साथ वाचा में बंधे हुए लोग यीशु के नाम में एकत्रित होते हैं। प्रोटेस्टेंट बल देते हैं कि दृश्य कलीसिया सार्वभौमिक हैं, क्योंकि ये हर जगह है जहां लोग परमेश्वर के साथ वाचा में मसीह के अधिकार के अधीन आत्मा की एकता में हैं। एक सबसे आम समस्या जिसका आज बहुत से मसीही सामना करते हैं वो ये जानना है कि उन्हें मसीह की सार्वभौमिक या वैश्विक कलीसिया के भाग के रूप में किन कलीसियाओं को गले लगाना चाहिए। संसार के अधिकांश भागों में विविध प्रकार की कलीसियाएं हैं जो मसीही होने का दावा करती हैं। एक मसीही प्रायः इन दोनों में से किसी एक चरम की ओर जाता है, या तो वे अपनी बाहों को इतना अधिक फैला लेते हैं कि किसी भी कलीसिया को अपना लेते हैं जो मसीही होने का दावा करती है, या वे अपनी संकुचित रूप में परिभाषित मंडली या संस्थान के अलावा शेष को नकार देते हैं। इस समस्या का एक सहायक हल कलीसिया के तीन पारंपरिक चिन्हों में पाया जा सकता है। इन चिन्हों का प्रतिपादन 17वीं सदी स्कॉटलैंड में जॉन नॉक्स ने किया, परंतु ये उस समय की बहुत सी प्रोटेस्टेंट कलिसियाओं के विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे। मूलतः ये चिन्ह मसीहियों को दृश्य सार्वभौमिक कलिसिया की वास्तविक मंडलियों को पाखंडी मंडलियों से अलग पहचान करने में सक्षम बनाते हैं।
कलिसिया के चिन्ह इस बात को जानने के लिए अत्यधिक आवश्यक थे कि कलिसिया कहाँ है, क्योंकि वास्तव में कोई भी स्वयं को कलिसिया कह सकता था। बड़े धर्मविज्ञानी संकटों जैसे 16वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलन में प्रश्न है, सच्ची कलिसिया कहाँ है? और इस प्रकार सुधारवादियों ने बहुत सावधानी से ये कहते हुए कलिसिया के चिन्हों को परिभाषित किया, ये कलिसिया के बाहर का चिन्ह नहीं है। जहाँ परमेश्वर के वचन का सही प्रचार है और जहाँ नियमों संस्कारों का उचित पालन किया जाता है, वहाँ कलिसिया है। विशेषकर कलिसिया का अनुशासन, ये समझना कि अनुशासन के चिन्ह के बिना कलिसिया की पवित्रता का आत्मसमर्पण हो जाता है और अंत में वो कलिसिया खराई और अपनी पहचान में भी आत्मसमर्पण कर देती है।
आइए परमेश्वर के वचन के प्रचार से शुरू करके दृश्य सार्वभौमिक कलिसिया के तीन पारंपरिक चिन्हों में से प्रत्येक को देखें। ऐसी कोई कलिसिया या संस्थान नहीं है जिसका परमेश्वर के वचन पर स्वामित्व, व्याख्या, प्रयोग या घोषणा के बारे में विशिष्ट दावा हो। कुछ कलिसियाएं और संस्थान दावा करते हैं कि केवल उनके पास पवित्र वचन की व्याख्या करने और सिखाने का अधिकार है। कुछ विशेष प्रकाश होने का दावा करते हैं जो बाइबल की उनकी समझ को शेष सबसे अधिक सत्य बनाता है, परंतु कोई भी कलिसिया वचन के प्रचार सहित किसी भी चिन्ह को सिद्धता से प्रकट नहीं करती है। परमेश्वर ने बाइबल संपूर्ण दृश्य कलिसिया को दी है और बाइबल को समझने में हमारी सहायता करने के लिए उसने संपूर्ण दृश्य कलिसिया को अपना पवित्र आत्मा दिया है। इन बातों को हम विभिन्न पद्यांशों में देखते हैं, जैसे 1 तिमोथियस 3:15 और इब्रानियों 4:11-13 और 6:4-6। इसके अतिरिक्त पवित्र वचन संपूर्ण दृश्य कलिसिया को परमेश्वर के वचन को पढ़ने, समझने और सिखाने का उपदेश देता है, जैसा हम देखते हैं 28:20, 1 तिमोथियस 4:17 और 2 तिमोथियस 2:15 और 3:14-17 में। कलिसिया का दूसरा चिन्ह बपतिस्मा और प्रभुभोज के संस्कारों का सही प्रबंध करना है। ये संस्कार संपूर्ण दृश्य कलिसिया के हैं, न कि केवल किसी एक या दूसरी संस्थान के। संस्कारों का पवित्र वचन के अनुसार प्रबंध करना दृश्य कलिसिया की प्रत्येक मंडली का सौभाग्य और उत्तरदायित्व है। इसे हम बपतिस्मा की महान आज्ञा को देखते हैं 28:19 में और बपतिस्मा पर पौलुस की शिक्षा को देखते हैं 1 कुरिन्थियों 1:13-17 में। इसे हम यीशु द्वारा प्रभुभोज की शुरुआत में भी देखते हैं 22:15-20 में, जहां प्रभु ने संकेत दिया कि भोज उसके संपूर्ण राज्य के लिए था, उन सबके लिए जो उसकी वाचा के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं पद्यांशों के कारण अधिकांश प्रोटेस्टेंट कलिसियाएं अन्य कलिसियाओं और संस्थाओं के संस्कारों को मानती और उनके पुष्टि करती हैं। दृश्य सार्वभौमिक कलिसिया का तीसरा पारंपरिक चिन्ह औपचारिक कलिसिया अनुशासन जैसे बहिष्कार है। कोई भी मसीही औपचारिक कलिसियाई अनुशासन, विशेषता बहिष्कार से खुश नहीं होता है और इस कारण कलिसियाएं प्रायः औपचारिक अनुशासन का प्रयोग करने से बचती रही हैं। निसंदेह सहनशीलता भी बाइबल की आज्ञा है, गेहूं और जंगली दानों के दृष्टांत में जो 13:24-30 में है। फिर भी अनुशासन का अपना स्थान है, कई बार व्यक्ति का पाप इतना समस्याप्रद होता है कि उसे अनुशासित किया जाना चाहिए, विशेषतः जब वो कलीसिया और उसकी साख के लिए खतरा बन जाए। ऐसे समयों पर अनुशासन कलीसिया की सुरक्षा और दोषी को मन फिराव की ओर लाने के लिए होता है। औपचारिक अनुशासन के लिए धर्मशास्त्रीय आधार विभिन्न पद्यांशों में पाया जा सकता है, जैसे मत्ती 16:19 और 18:18, यूहन्ना 20:23 और तीतुस 3:10 में। और हम इसके प्रयोग को देखते हैं 1 कुरिन्थियों 5:1-13 में। संपूर्ण कलीसिया मसीह की है और पृथ्वी पर उसका प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए दृश्य कलीसिया के प्रत्येक भाग के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो कलीसियाई अनुशासन के उचित प्रयोग द्वारा मसीह के लोगों की सुरक्षा करे और मसीह के सम्मान का बचाव करे।
कलीसिया के चिन्ह आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। वे इस बात को निश्चित करने में हमारी सहायता करते हैं कि हमारी मंडलियां परमेश्वर के साथ की वाचा में मसीह के अधिकार के अधीन दृश्य कलीसिया की सीमाओं में रहें। वे कलीसिया के दुश्मनों की पहचान करने में भी हमारी सहायता करते हैं, ताकि हम मसीहों को ऐसे समूहों से दूर रहने की चेतावनी दे सके और जिससे हम संसार को बता सके कि ये झूठे समूह हमारे प्रभु और उसके सुसमाचार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जब हम सेवकाई करते हैं तो वे हमें संस्थागत सीमाओं के परे भी कार्य करने की प्रेरणा दे सकते हैं। जब हमें पता चलता है कि मसीह के देह हमारी कलीसियाओं तक सीमित नहीं है परंतु पूरे संसार में फैली है जहां मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, तो हमें हर व्यक्ति को गले लगाने की प्रेरणा मिल सकती है जो दृश्य कलीसिया का हिस्सा है।
अब जबकि हम दृश्य कलीसिया की वैश्विक प्रकृति को देख चुके हैं, आइए अब हम देखें कि अदृश्य कलीसिया किस प्रकार सार्वभौमिक या वैश्विक है। जब हम सार्वभौमिकता की अपनी समझ को अदृश्य कलीसिया की अपनी समझ से जोड़ते हैं, तो हम अदृश्य सार्वभौमिक कलीसिया को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। हर युग के सारे लोग जो उद्धार के लिए मसीह में संगठित हैं, जैसे हमने कहा, अदृश्य कलीसिया दृश्य कलीसिया का छोटा हिस्सा है। इसलिए यह भी सत्य है कि अदृश्य कलीसिया का प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के साथ वाचा में मसीह के अधिकार के अधीन है, परंतु अदृश्य कलीसिया को पहचानने के लिए हमारी परिभाषा केवल इस बात पर केंद्रित है कि यह दृश्य कलीसिया से किस प्रकार अलग है। अदृश्य कलीसिया की सार्वभौमिकता के बारे में विचार करने के कई तरीके हैं, परंतु हम केवल दो पर ध्यान देंगे। पहला, अदृश्य कलीसिया वैश्विक है क्योंकि उद्धारकर्ता केवल एक है, और दूसरा, अदृश्य कलीसिया वैश्विक है क्योंकि केवल एक सच्चा धर्म है जो हमें उस उद्धारकर्ता तक पहुंचा सकता है। आइए पहले हम इस विचार को देखें कि उद्धारकर्ता केवल एक है। पवित्र वचन स्पष्ट रूप से सिखाता है कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धारकर्ता है जो मनुष्यों के लिए उपलब्ध है। केवल वही है जिसमें कभी हमें बचाने की शक्ति थी, और केवल वही एकमात्र है जिसमें कभी होगा। जैसे पत्रस ने प्रेरितों के काम 4:12 में बल देकर कहा, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। केवल यीशु मसीह ही मनुष्यों के लिए उपलब्ध एकमात्र उद्धार करता है। हमारे प्रभु ने स्वयं इस सत्य की घोषणा की जब उसने यूहन्ना 14:6 में ये शब्द कहे, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
केवल यीशु ही वो क्यों है जो हमें बचा सकता है? क्योंकि उद्धारकर्ता को सिद्ध मनुष्य के साथ साथ सिद्ध परमेश्वर भी होना चाहिए, और यीशु को हमारे स्थान पर खड़ा होने के लिए, हमारा बलिदान बनने के लिए, हमारा स्थानापन्न बनने के लिए सिद्ध मनुष्य बनना पड़ा। केवल यीशु ही उस भूमिका को अदा कर पाया। और निस्संदेह ये छुटकारे के इतिहास के लिए तैयार किया गया जब परमेश्वर ने दाऊद के सिंह को परमेश्वर के मसीहा और अभिषिक्त जन के रूप में नियुक्त किया। और यीशु दाऊद के बाद आने वाला महान राजा है और यीशु इस पद को संभालता है। और इस प्रकार संपूर्ण पुराना नियम हमें यीशु के आगमन के लिए तैयार करता है। और केवल यीशु ही है जो अपने लोगों को पूरी तरह पाप से उद्धार देने के मानकों को पूरा करता है।
यीशु प्रेसबिटेरियन, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, लुथरन, रोमन कैथोलिक कलीसियाओं, पूर्वी ऑर्थोडॉक्स और दृश्य कलीसिया की प्रत्येक संस्थान का उद्धार करता है। केवल एक दृश्य कलीसिया है क्योंकि उद्धार पाया हुआ प्रत्येक व्यक्ति उसी मसीह, उसी उद्धारकर्ता से संगठित है। वो हमारी एकता का स्रोत है और वो अविभाजित है, इसलिए हम भी अविभाजित हैं। अदृश्य कलीसिया के सार्वभौमिक या वैश्विक होने के तथ्य से संबंधित दूसरा विचार है कि केवल एक सच्चा धर्म है जो हमें मसीह तक पहुंचा सकता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि मसीहियत मुख्यतः उद्धार की एक प्रणाली नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ वाचा का संबंध है। अर्थात दूसरे धर्मों के विपरीत मसीहियत मूलतः उद्धार पाने की विधि नहीं है। इसकी अपेक्षा ये परमेश्वर और उसके लोगों के बीच एक संबंध है। हाँ, विश्वास एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को सही रखता है। परंतु यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं तो आपकी क्या पहचान है? क्या आप परमेश्वर के राज्य के एक विश्वास योग्य नागरिक हैं? जब परमेश्वर आपको देखता है तो क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो मसीह की वाचा के लहू में छिपा है, या आप उसके शत्रुओं के राज्य के नागरिक हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी योग्यता के आधार पर परमेश्वर के सामने खड़ा होता है और इसलिए आपको अपने पाप का दंड भुगतना होगा? दुखद रूप से झूठे धर्मों के लोग शत्रु राज्यों के सदस्य हैं, वे परमेश्वर की वाचा के लोगों के भाग नहीं हैं और इसलिए वे मसीह के नहीं हैं और न बन सकते हैं। केवल मसीहियत हमें उद्धारकर्ता तक पहुंचा सकती है। इसीलिए बाइबल की मसीहियत इस संभावना का इनकार करती है कि लोग दूसरे धर्मों के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। फिर चाहे उन लोगों या धर्मों के इरादे नेक ही क्यों न प्रतीत हों।
जैसा हम जानते हैं, बहुत से गैर मसीह धर्म हैं जिन्हें कई बार उनके आकार और उनके प्रभाव के कारण संसार के महान धर्म कहा जाता है। और प्रायः ये पूछा जाता है कि यदि एक व्यक्ति जो मसीह नहीं है परंतु वो संसार के इन दूसरे महान धर्मों में से किसी एक में विश्वास योग्यता से संलग्न है तो क्या वे स्वर्ग में जाएंगे यदि भी वे मसीह को नहीं मानते हैं? शायद उन्होंने मसीह के बारे में कभी सुना ही ना हो। बाइबल इस बारे में स्पष्ट है। यूहन्ना 14:6 में इस परिस्थिति के बारे में यीशु बिल्कुल स्पष्ट था। उसने स्वयं के बारे में कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं। और यदि ये पर्याप्त स्पष्ट नहीं था तो वो आगे कहता है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम लोगों के जीवनों में हर प्रकार की भलाई को देखते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों। परंतु हम लोगों के जीवन में अत्यधिक बुराई भी देखते हैं। और यदि हम परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य के पाप में पतन को पहचान ले तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर के सामने आने और उसके साथ संबंध में रहने के लिए केवल नैतिक व्यवहार पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। केवल यीशु ही है जो परमेश्वर के साथ पुनः हमें संबंध को स्थापित करने का मार्ग उपलब्ध कराता है।
जैसा हमने बताया, अदृश्य कलीसिया के जीवित सदस्य साधारण रूप से दृश्य कलीसिया में शामिल हैं। इस कारण बहुत से धर्मविज्ञानियों ने कहा है कि उद्धार उन लोगों के लिए साधारण रूप से संभव नहीं है जो दृश्य कलीसिया से बाहर हैं, अर्थात यदि एक व्यक्ति दृश्या कलिसिया का हिस्सा नहीं है तो उस व्यक्ति के पास उद्धार का कोई साधारण अवसर नहीं है। आरंभिक कलिसियाई पुरखे सिप्रियन ने, जो 200 से 258 ईस्वी में रहा, इसे अपनी पुस्तक ऑन द यूनिटी ऑफ द चर्च में इस प्रकार बताया, जो कोई कलिसिया से अलग हो जाता है और व्याभिचारिणी से जुड़ जाता है वो कलिसिया के वायदों से अलग हो जाता है। ना ही मसीह की कलिसिया को त्यागने वाला मसीह के प्रतिफलों को पा सकता है। वो एक अजनबी है, वो अशुद्ध है, वो एक शत्रु है। परमेश्वर उस व्यक्ति का पिता नहीं रह सकता जिसके पास माता के रूप में कलिसिया नहीं है। यहां सिप्रियन उन लोगों के विरुद्ध तर्क दे रहा था जिन्होंने दृश्या कलिसिया को छोड़ दिया था, और उसका कहना था, जब तक आप दृश्या कलिसिया के भाग नहीं हैं, तब तक मसीह के प्रतिफलों को पाने के लिए आदृश्य कलिसिया में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यह तर्क उसके अनुरूप है जो हमने कहा कि दृश्य कलिसिया परमेश्वर के साथ वाचा में बंधी है। और मामले का तथ्य यह है कि उद्धार भी परमेश्वर की वाचा की आशीष है। इसे हम बहुत से स्थानों पर देख सकते हैं, जैसे यिर्मयाह 31:31-34, लूका 1:69-75, रोमियो 11:27, इब्रानियों 7:22-25 और अन्य स्थानों पर। एक उदाहरण के रूप में लूका 22:20 में यीशु के वचनों को सुने जब उसने प्रभुभोज की शुरुआत की, ये कटोरा मेरे उस लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। अपने पकड़े जाने की रात यीशु ने कहा कि हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने वाला उसका लहू एक वाचा होगा। दूसरे शब्दों में, मसीह के लहू में उद्धार केवल उसकी वाचा के द्वारा है। चूंकि परमेश्वर की वाचा दृश्या कलिसिया के साथ है, इसलिए उद्धार साधारण रूप से दृश्या कलिसिया के द्वारा है। ये तब होता है जब दृश्या कलिसिया में लोग विश्वास में आते हैं या सुसमाचार प्रचार के द्वारा दृश्या कलिसिया मन फिराने वालों को प्राप्त करती है। निसंदेह कई बार लोग कलिसिया के साथ बिना किसी संपर्क के भी उद्धार पाते हैं, परंतु जब ऐसा होता है तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि कुछ असामान्य, कुछ असाधारण हो रहा है।
विश्वव्यापी अदृश्य कलिसिया में केवल वही लोग उद्धार पा सकते हैं जो परमेश्वर की वाचा के प्रति विश्वास योग्य है। इस बात की आशा नहीं है कि दूसरे धर्मों के लोग अपने धर्मों और भले बनने के द्वारा स्वर्ग में पहुंचेंगे। हमें सुसमाचार प्रचार करना है, हमें लोगों को एकमात्र उद्धारकर्ता के बारे में बताना है, हमें उन्हें एकमात्र वाचा के समुदाय परमेश्वर के राज्य में लाना है, और उन्हें प्रभु और राजा से प्रेम करना और उसकी आज्ञा मानना सिखाना है। अदृश्य कलिसिया में हम सब उद्धार पाए हुए लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। ये मसीह में हमारी एक रूपता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक भयानक चेतावनी भी है जो मसीह में नहीं है।
अब तक कलिसिया पर हमारे अध्याय में हमने कलिसिया की दिव्य स्वीकृति को देखा, और हमने देखा कि कलिसिया पवित्र और सार्वभौमिक है या वैश्विक दोनों है। अब हम अपने अंतिम मुख्य विषय पर आने के लिए तैयार हैं, ये विचार कि कलिसिया संतों की संगति है। पवित्र शब्द के ऊपर हमारी चर्चा में हमने देखा कि संत शब्द सामान्य अर्थ में उस प्रत्येक व्यक्ति को बताता है जो दृश्य कलिसिया में है, और विशेष अर्थ में उस प्रत्येक व्यक्ति को जो अदृश्य कलिसिया में है। अतः जब हम संतों की संगति की बात करते हैं तो हम अपने ध्यान को उस शब्द पर केंद्रित करेंगे जिसकी हमने अब तक जांच नहीं की है, वो है संगति। प्रेरितों के विश्वास कथन के प्राचीन यूनानी अनुवादों में संगति के लिए कोइनोनिया शब्द है। पवित्र वचन आमतौर पर इस शब्द का प्रयोग उस संगति के लिए करता है जो कलिसिया के सदस्यों के बीच है, विशेषतः परमेश्वर के साथ उनकी एकता के द्वारा। इसे हम विभिन्न जगहों में देखते हैं, जैसे प्रेरितों के काम 2:42, दूसरा कुरिन्थियों 13:14 और पहला यूहन्ना 1:3 में। नया नियम प्रायः वस्तुओं और धन को आपस में बांटने के लिए भी कोइनोनिया शब्द का प्रयोग करता है। इसे हम विभिन्न स्थानों पर देखते हैं, जैसे रोमियो 15:16, दूसरा कुरिन्थियों 9:13 और इब्रानियों 13:16 में। इसे सुसमाचार को बांटने का वर्णन करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सुसमाचार प्रचार नहीं बल्कि कलिसिया में एक दूसरे के साथ, जैसे फिलिपियों 1:5 और फिलेमोन 6 में। इन विचारों के अनुसार विश्वास कथन के संगति शब्द को पारंपरिक रूप से कलिसिया के सदस्यों के बीच संगति को बताने के लिए लिया जाता रहा है, उन वस्तुओं को आपस में बांटने में जो हमारे बीच साझे की हैं, और हमारी आपस में उन पर निर्भरता जो हमारे साथ बांटते हैं। जब हम संतों की संगति को देखते हैं, हम अपनी चर्चा को एक विशेषता पर संगठित करेंगे जो अब तक परिचित हो गई होगी। पहला, हम उस संगति को देखेंगे जो दृश्य कलिसिया के अंदर विद्यमान है, और दूसरा, हम उस संगति को देखेंगे जो अदृश्य कलिसिया के अंदर विद्यमान है। आइए दृश्य कलिसिया के अंदर संतों की संगति से शुरू करें। दृश्य कलिसिया में विद्यमान संगति के बहुत से पहलू हैं, लेकिन हम केवल 3 पर ध्यान देंगे। पहला, अनुग्रह के साधन, दूसरा, आत्मिक वरदान और तीसरा, भौतिक वस्तुएं। आइए हम अनुग्रह के साधन से शुरू करें। अनुग्रह के साधन वे औजार या उपकरण हैं जिनका परमेश्वर सामान्यतः अपने लोगों को अनुग्रह देने के लिए प्रयोग करता है। जॉन वेस्ली, मेथोडिस्ट कलिसिया के संस्थापकों में से एक, ने अनुग्रह के साधनों का इस प्रकार वर्णन किया जो बहुत सी मसीही परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। देखें मलाकी 3:7 के आधार पर अपने उपदेश संख्या 16 में उसने क्या लिखा। अनुग्रह के साधनों से मैं उन बाहरी चिन्हों, शब्दों या कार्यों को समझता हूं जिन्हें परमेश्वर ने ठहराया है और इस उद्देश्य के लिए नियुक्त हैं कि वे साधारण माध्यम बने जिनके द्वारा वो मनुष्यों का अपना बचाने वाला, धर्मी ठहराने वाला या शुद्ध करने वाला अनुग्रह देता है।
अनुग्रह के साधन जिन्हें कुछ लोग उस परंपरा के आधार पर जिससे वे संबंधित है आत्मिक कार्य कहते हैं। जब मैं सुनता हूं वे कैसे कार्य करते हैं, तो जो मैं हमेशा कहना चाहता हूं वो है, वे कार्य नहीं करते हैं, परमेश्वर कार्य करता है। परंतु अनुग्रह के साधन हमें उस अनुग्रह को पाने के अवसर प्रदान करते हैं। वे हमारे जीवनों में कार्यरत परमेश्वर के अनुग्रह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय और स्थान उत्पन्न करते हैं। उन्हें पाइप लाइन के रूप में देखना मुझे अच्छा लगता है। हम पाइप और पानी के बीच असमंजस में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम जीवन के जल को पाना चाहते हैं, परंतु पाइप लाइन उस पानी को हम तक पहुँचाने में सहायता करती है। अनुग्रह के साधन हमें जीवन के जल में से पीने में सक्षम बनाते हैं।
व्यवहारिक रूप से बहुत से साधन हैं जिनके द्वारा परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, जिनमें ये शामिल हैं, जैसे विपरीत परिस्थितियां और कष्ट, विश्वास, परोपकार और स्वयं संगति। परंतु पारंपरिक रूप से धर्म विज्ञानियों ने विशेषतः 3 अनुग्रह के साधनों पर ध्यान दिया है, परमेश्वर का वचन, बपतिस्मा और प्रभुभोज के संस्कार और प्रार्थना। ये सारे अनुग्रह के साधन संपूर्ण दृश्य कलिसिया के हैं, जिसमें उसके विश्वासी और अविश्वासी दोनों हैं। वेस्टमिंस्टर लघु प्रश्नोत्तरी मसीही शिक्षा का एक पारंपरिक प्रोटेस्टेंट सारांश अपने प्रश्न और उत्तर संख्या 88 में अनुग्रह के साधनों का इस प्रकार वर्णन करती है। वे कौन से बाहरी साधन हैं जिनके द्वारा मसीह हमें छुटकारे के लाभ प्रदान करता है? बाहरी साधन जिनके द्वारा मसीह हमें छुटकारे के लाभ प्रदान करता है वे हैं उसके नियम, विशेषता, वचन, संस्कार और प्रार्थना। इन सबको चुने हुओं के उद्धार के लिए प्रभावी बनाया जाता है। पवित्र वचन अनुग्रह के साधनों के लाभों के बारे में विभिन्न स्थानों पर बात करता है, जैसे रोमियो 10:14, पहला कुरिन्थियों 10:17 और पहला पत्रस 3:12-21 में। अब यद्यपि छुटकारे के लाभ केवल उनके लिए है जिन्होंने उद्धार पाया है, अर्थात केवल अदृश्य कलिसिया के लिए, लेकिन नियम संपूर्ण दृश्य कलिसिया के लिए हैं। याद रखें, अदृश्य कलिसिया बिल्कुल यही है, अदृश्य। हम नहीं जानते उसमें कौन है, उसकी कोई अलग आराधना सभा नहीं होती, इसके अलग कोई सेवक नहीं है, इसका अपना कलिसियाई शासन नहीं है। ये बातें दृश्य कलिसिया के लिए नियुक्त हैं। इसी प्रकार हमारे सारे अनुग्रह के साधन, हमारे प्रचार, बपतिस्मा, प्रभुभोज और प्रार्थनाएं दूसरों के द्वारा भी किए जा सकते हैं। वे दृश्य हैं, ये वे बातें हैं जिनमें दृश्य कलिसिया सामान्य रूप से भाग लेती है और इसलिए वे दृश्य कलिसिया की संगति के भाग हैं। अनुग्रह के साधन सदा से महत्वपूर्ण आदेश रहे हैं जिनके द्वारा परमेश्वर सामान्यतः छुटकारे की आशीषों को हमारे जीवन में लागू करता है और हमें उनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमें सुसमाचार प्रचार करना चाहिए जो परिवर्तन लाए, और वचन सिखाना चाहिए जो बुद्धि और परिपक्वता लाए। हमें संस्कारों को मनाना चाहिए जो दृश्य रूप से सुसमाचार प्रस्तुत करते हैं और परमेश्वर की वाचा में हम पर मुहर लगाते हैं। और हमें परमेश्वर के अनुग्रह और क्षमा, लोगों के परिवर्तनों और परिपक्वता, पाप का सामना करने में सहायता के लिए, बुराई से सुरक्षा के लिए और जरूरत के समय हमारे बचाव के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इन सारे तरीकों में और इनसे बढ़कर अनुग्रह के साधन दृश्य कलिसिया के अनमोल सेवकाइयां हैं। अनुग्रह के साधनों के अतिरिक्त दृश्य कलिसिया में आत्मिक वरदान भी हैं।
हमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब हम कहते हैं कि आत्मिक वरदान संपूर्ण दृश्य कलिसिया के हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि दृश्य कलिसिया के प्रत्येक व्यक्ति में पवित्र आत्मा वास करता है। केवल विश्वासियों में पवित्र आत्मा वास करता है। पवित्र आत्मा दृश्य कलिसिया की उन्नति के उद्देश्य से सारे आत्मिक वरदानों का प्रयोग करता है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है अपने पवित्रीकरण को बढ़ाना और परिपक्वता की ओर बढ़ना। दूसरों के लिए इसका मतलब है उन्हें पहले विश्वास में लाना। परंतु सारे मामलों में दृश्य कलिसिया के प्रत्येक व्यक्ति का आत्मिक वरदानों से सामना होता है और उन्हें कुछ हद तक उनमें भाग लेने की अनुमति भी दी जाती है। और इस कारण ये कहना सही है कि आत्मिक वरदानों में संपूर्ण दृश्य कलिसिया द्वारा भाग लिया जाता है।
संपूर्ण दृश्य कलिसिया द्वारा आत्मिक वरदानों में शामिल होने को कई रीतियों से प्रकट किया जाता है। पहला, उनका प्रयोग सार्वजनिक आराधना सभाओं में किया जाता है। इसे हम स्पष्ट रूप से देखते हैं पहला कुरिन्थियों 14:13-26 में। दूसरा, वरदान संपूर्ण कलिसिया की उन्नति के लिए दिए जाते हैं। इसे हम विभिन्न स्थानों पर देख सकते हैं, जैसे पहला कुरिन्थियों 12:4-7 और इफिसियों 4:3-13। तीसरा, पौलुस ने विशेष रूप से कहा कि अन्य भाषा कलिसिया के अंदर अविश्वासियों के लिए भी एक चिन्ह है, जिसे हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 14:21-22 में। चौथा, आत्मिक वरदानों से लाभ उठाने में असफल होने के लिए कलिसिया के अंदर अविश्वासियों को दोषी ठहराया गया है, इसे हम देखते हैं इब्रानियों 6:4-6 में। इन तरीकों से पवित्र वचन इसे स्पष्ट करता है कि विश्वासी और अविश्वासी एक समान कलिसिया के आत्मिक वरदानों में हिस्सेदार हैं। अनुग्रह के साधनों के समान आत्मिक वरदान आधुनिक दृश्य कलिसिया के लिए बहुत लाभदायक हैं। वे सच्चाई की घोषणा करने और खोए हुओं को परिवर्तित करने में उपयोगी हैं। वे विश्वासियों को विश्वास और परिपक्वता में बढ़ने में सहायता के लिए उपयोगी हैं। और बहुत से वरदान जैसे करुणा और मेजबानी परमेश्वर के लोगों की सांसारिक जरूरतों को पूरा करने में उपयोगी हैं। जब कभी पवित्र आत्मा अपने लोगों को वरदान देता है तो हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वे सबकी भलाई के लिए उन वरदानों का उपयोग करें और उन्हें दृश्य कलीसिया में किसी से रोके नहीं। संगति दृश्य कलीसिया में इस रूप में भी विद्यमान है कि सदस्य अपनी भौतिक वस्तुओं को आपस में बांटते हैं। बाइबल और आरंभिक कलीसिया में संगति या कोइनोनिया का एक अर्थ यह भी है कि मसीही लोग अपनी भौतिक वस्तुओं को दृश्य कलीसिया के जरूरतमंद लोगों में बांटते थे। निर्धनों के लिए दान एकत्रित करने के लिए प्रायः कोइनोनिया शब्द का प्रयोग किया जाता था, जैसे रोमियो 15:26, दूसरा कोरिंथियो 8:4, 9:13 और इब्रानियो 13:16 में। जब कोइनोनिया शब्द का प्रयोग ना भी हो तब संगति के इस पहलू को आरंभिक मसीहियों के व्यवहार में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, बहुत से आरंभिक मसीहियों ने अपनी संपत्तियों को बेचा और धन को कलीसिया में दे दिया, जैसा हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2:44-45 और 4:34-35 में। आरंभिक कलीसिया में कुछ वीर मसीहियों ने दूसरों को मुक्त करने या निर्धनों को खिलाने के लिए धन एकत्रित करने हेतु स्वयं को गुलामी में बेच दिया। आरंभिक कलीसियाई पुरखे क्लेमेंट ने, जो 30 से 100 ईस्वी में रहा, इस व्यवहार के बारे में पहला क्लेमेंट के नाम से ज्ञात पत्र में लिखा, जिसे उसने कोरिंथियों को लिखा था। उस पत्र के अध्याय 55 से इन शब्दों को देखें। हम जानते हैं कि हमारे बीच में बहुत से लोगों ने अपने आप को बंधनों में दे दिया है ताकि वे दूसरों को छुड़ा सकें। बहुतों ने अपने आप को दास के रूप में बेच दिया है ताकि स्वयं के लिए प्राप्त उस मोल से वे दूसरों को भोजन उपलब्ध करा सकें। आरंभिक कलीसिया में संगति का विचार इतना अधिक मजबूत था और विश्वासी दूसरों को खुद से इतना अधिक मान देते थे कि वे न केवल अपनी संपत्तियों को बांटने के लिए तैयार थे बल्कि दूसरों को देने की खातिर अपनी आजादी का भी बलिदान करने के लिए तैयार थे। पौलुस के वचन 2 कुरिन्थियों 8:3-5 में उनकी सोच को स्पष्ट करते हैं। देखें वो वहां क्या लिखता है। उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इस पद्यांश में पौलुस ने मकिदुनिया की कलीसियाओं की उदारता का वर्णन किया और उसने बताया कि ये प्रभु के प्रति उनका समर्पण था जिसके कारण उन्होंने इतने त्यागपूर्वक प्रभु की दृश्य कलीसिया के साथ बांटा। जरूरतमंद लोगों के साथ भौतिक वस्तुओं को बांटना दृश्य कलीसिया के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। संपूर्ण कलीसिया परमेश्वर के लोग, उसकी वाचा का समुदाय है। वो उसमें से प्रत्येक को संभालता है, हमसे भी ऐसा ही चाहता है। सरल शब्दों में, जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु का है। उसने हमें अपनी संपत्ति का केवल भंडारी बनाया है और इसका अर्थ है कि हमारा परोपकार और देना प्रभु की अपने लोगों के प्रति सेवकाई है और संसार के लिए उसके सुसमाचार की गवाही है। अतः यदि हम उसके प्रति विश्वास योग्य बनना चाहते हैं तो हमें प्रभु की संपत्ति को उसके लोगों से रोकना नहीं चाहिए जिन्हें इसकी जरूरत है। अब जबकि हम दृश्य कलीसिया में संतों की संगति को देख चुके हैं तो हम अदृश्य कलीसिया में संगति को देखने के लिए तैयार हैं। हम अदृश्य कलीसिया में संतों की संगति से संबंधित दो मुख्य विचारों को देखेंगे। पहला, हम मसीह में सारे विश्वासियों की एकता के बारे में बात करेंगे और दूसरा, हम अदृश्य कलीसिया में दूसरे विश्वासियों के साथ हमारी एकता के बारे में बात करेंगे। आइए पहले मसीह के साथ हमारी एकता को देखें। नया नियम निरंतर वर्णन करता है कि विश्वासी मसीह में एक हैं। इस विचार को सर्वाधिक साधारण रूप में ये कहने के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि विश्वासी मसीह में या यीशु में या उसमें हैं। एक तरफ इस एकता का मतलब है कि यीशु पिता के सम्मुख विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करता है, विशेषतः अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान में। परंतु दूसरी तरफ इसका मतलब है कि विश्वासियों की महत्वपूर्ण रीति से यीशु के साथ रहस्यमयी एकता है। यीशु विश्वासियों में वास करता है और वे उसमें वास करते हैं।
मेरा विचार है कि प्रेरित पौलुस की मुख्य शिक्षाओं में से एक विशेषता यह है कि हम यीशु मसीह के साथ एक हैं, हम उसके हैं। जब हम बाइबल के सारे प्रकाशन को देखते हैं तो मेरा विचार है कि बाइबल सिखाती है कि या तो हम आदम में हैं या हम मसीह में हैं। निसंदेह आदम पहला मनुष्य था, सारे मनुष्य आदम की पुत्र और पुत्रियां हैं, और इसलिए वे संसार में पापियों के रूप में आते हैं। उनमें पाप का स्वभाव है, वे परमेश्वर से दूर हैं। उद्धार पाने और छुटकारा पाने और मसीह में भरोसा करने का अर्थ है मसीह में शामिल किया जाना, मसीह का होना। मसीह के साथ एक होने का अर्थ है उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनना। मसीह के साथ एक होने के द्वारा हम मसीह के सारे लाभों को प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक रूप से इन लाभों को हम इन नामों से जानते हैं: धर्मी ठहराया जाना, पवित्रीकरण और ले पालकपन, जिन्हें हम उद्धार में प्राप्त करते हैं। और इसलिए ये हमारे लिए आवश्यक है कि इन लाभों को प्राप्त करने के लिए हम मसीह के साथ एक हो। कैसे हम मसीह के साथ एक होते हैं? केवल विश्वास के द्वारा। ये विश्वास ही है जो हमें मसीह में एक बनाता है, विश्वास का वरदान जो परमेश्वर से आता है।
धर्मविज्ञानी प्रायः ईश्वर और विश्वासियों के बीच इस एकता को रहस्यवादी कहते हैं, क्योंकि बाइबल नहीं बताती कि यह कैसे होता है। परंतु पवित्र वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि इस एकता में हमारी देह और आत्मा दोनों शामिल हैं। इसे हम विभिन्न जगहों में देख सकते हैं, जैसे यूहन्ना 15:4-7, रोमियो 8:9-11 और बहुत से अन्य स्थानों पर। एक उदाहरण के लिए 1 कुरिन्थियों 6:15-17 में पौलुस के शब्दों को देखें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। चार्ल्स स्पर्जन, प्रसिद्ध बैप्टिस्ट प्रचारक जो 1834-1892 में रहे, ने इफिसियों 5:30 के आधार पर अपने संदेश अतुल्य रहस्य में मसीह के साथ हमारी एकता के बारे में बताया। देखें उन्होंने क्या कहा। हमारे और मसीह के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध है। ये एकता नहीं है, ये पहचान है। ये साथ जुड़ने से कहीं बढ़कर है। ये हिस्सा बनाना है, संपूर्ण का एक आवश्यक हिस्सा। मसीह के पास उसके लोग होने चाहिए, वे उसके लिए आवश्यक हैं। ये सोचना अद्भुत है कि मसीह के साथ हमारी एकता इतनी महत्वपूर्ण है कि स्वयं मसीह को हानि होगी यदि हमें उससे अलग कर दिया जाए। वो हमसे प्रेम करता है और मरा कि हम उसके प्रतिफल, उसकी मीरास बने। हम उसमें एक हैं, इसलिए प्रत्येक विश्वासी को हमारे उद्धार में बड़ी सुरक्षा, क्षमा का बड़ा आश्वासन और परमेश्वर के सामने हमारे सही खड़े रहने के प्रति बड़ी प्रेरणा को महसूस करना चाहिए। हमें इस एकता से सामर्थ पानी चाहिए, मसीह के द्वारा पुष्ट होना चाहिए, उसके आत्मा के द्वारा स्थिर रहना चाहिए, और हमें परमेश्वर के साथ हमारी संगति में निडर रहना चाहिए। ये जानते हुए कि हम मसीह में छिपे हैं, इसलिए हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की नज़रों में सिद्ध हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे हमारे पापों के लिए हमें अनुशासित नहीं करेंगे, परंतु इसका मतलब है कि जब वे ऐसा करते हैं तो ये एक प्रेम का कार्य होगा जो हमें परमेश्वर के साथ सदा की संगति के उपयुक्त बनाने के लिए, हमें परिपक्व और सिद्ध बनाने के लिए होगा। अब जबकि हम मसीह के साथ विश्वासियों की एकता को देख चुके हैं, अब हम मसीह में दूसरे विश्वासियों के साथ हमारी एकता को देखने के लिए तैयार हैं। अदृश्य कलीसिया का प्रत्येक व्यक्ति मसीह में एक है, इसलिए विश्वासी भी उसमें आपस में एक हैं। इसे हम विभिन्न स्थानों पर देखते हैं, जैसे रोमियो 12:5, गलतियों 3:26-28, इफिसियों 4:25 और कई अन्य स्थानों पर। देखें, यीशु इस संगति के बारे में पिता से किस प्रकार कहता है, यूहन्ना 17:22-23 में। और वो महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे स्थित होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे भी प्रेम रखा। दृश्य कलीसिया के साथ हमारी एकता संबंध और व्यवहार की है, जबकि अदृश्य कलीसिया के साथ हमारी एकता आत्मिक और सात्विक है। हमारे अस्तित्व मसीह और उसके आत्मा के द्वारा आपस में बुने हुए हैं। परिणाम स्वरूप मसीह में हम सब की बराबर प्रतिष्ठा है, जैसे पौलुस ने सिखाया, 2 कुरिन्थियों 5:14-16, गलतियों 3:28 और कुलुसियों 3:11 में। और हम एक दूसरे की खुशियों और दर्द को भी महसूस करते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 12:26 में। और अदृश्य कलीसिया की संगति पृथ्वी पर कलीसिया तक सीमित नहीं है, ये स्वर्ग की कलीसिया तक जाती है, उन विश्वासियों तक जो पहले ही मर चुके हैं और प्रभु के साथ हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के विश्वासियों की मसीह में और मसीह के द्वारा आपस में एक रहस्यमयी संगति है, वही संगति हमारी उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ है जो मसीह में एक है, उन विश्वासियों सहित जो अब स्वर्ग में हैं। पवित्र वचन इस विचार को विभिन्न स्थानों पर सिखाता है, जैसे इब्रानियों 11:4 और 12:22-24 में। इस तथ्य को सिखाने के लिए वचन कलीसिया के लिए मसीह की दुल्हन के चित्र का प्रयोग करता है। दृश्य कलीसिया के साथ मसीह की दुल्हन के रूप में व्यवहार किया जाता है, परंतु ये हमेशा उसे अदृश्य कलीसिया की दुल्हन की सिद्धता तक पहुंचाने के लिए है। इसे हम विभिन्न स्थानों पर देखते हैं, जैसे यशाया 54:5-8, होशे 2:19-20 और इफिसियों 5:26-27 में। और इन रूपों की पूर्णता प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में सिद्ध अदृश्य कलीसिया में प्रकट होती है। प्रकाशित वाक्य 19:6-8 में यूहन्ना के दर्शन के वर्णन को देखें। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। यहाँ हम मसीह की दुल्हन को, जिसमें हर युग के छुड़ाए हुए संत हैं, एक दूसरे के साथ संगति में देखते हैं। हम सब एक विवाह का वस्त्र पहनकर, जो प्रत्येक विश्वासी के धर्म के कार्यों से निर्मित है, एक के रूप में खड़े होंगे। पवित्र वचन इस तथ्य से कई प्रयोगों को निकालता है कि विश्वासी मसीह में एक दूसरे से जुड़े हैं। ये हमें सिखाता है कि प्रत्येक विश्वासी मूल्यवान है और मसीह के लिए अत्यावश्यक भी है। ये हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे का आदर करें और एक दूसरे की सेवा करें। ये हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे पर तरस खाएं, दयालु बने, नम्र और धीरज रखें और क्षमा करें। यह हमें सिखाता है कि हम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे व्यवहार करें, और जैसा हम अपने आप से व्यवहार करते हैं। मसीह के द्वारा उनके साथ हमारी एकता के कारण वे हमारी देह के समान ही हमारा हिस्सा हैं। प्रेरितों के विश्वास कथन के इस अध्याय में हमने कलीसिया के सिद्धांत का अवलोकन किया। हमने परमेश्वर के विशेष समुदाय के रूप में कलीसिया की दिव्य स्वीकृति को देखा। हमने इस तथ्य पर विचार किया कि कलीसिया पवित्र है, अलग की गई है और शुद्ध है। हमने इसकी सार्वभौमिक या वैश्विक प्रकृति के बारे में बात की और हमने बताया कि किस प्रकार ये संतों की संगति है।
आधुनिक मसीहों के रूप में कलीसिया का हमारा अनुभव प्रायः उससे बहुत अलग होता है जैसा बाइबल के दिनों में था या प्रेरितों के समय में था, परंतु कलीसिया के जीवन की आधारभूत वास्तविकताओं में कोई अंतर नहीं आया है। कलीसिया अब भी परमेश्वर की वाचा का जन समूह है। ये अब भी संसार तक सुसमाचार को पहुंचाने और संसार को पृथ्वी पर उसके राज्य की ओर मुड़ने के लिए उसका चुना हुआ पात्र है। हम कलीसिया प्रभु के लिए पवित्र हैं, हम उसके राज्य हैं, हम उसके लोग हैं, आपस में एक दूसरे के साथ उसमें जुड़े हुए हैं और प्रभु स्वयं हमारे द्वारा कार्य कर रहा है।
Pontius